बहुत बहुत धन्यवाद भाई नेविल, आप बैठ सकते हैं। मैं इसे विश्वास करता हूं कि यह एक बार कहा गया था कि मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के घर में चलें। अब हमें खेद है कि हमारे पास जगह नहीं है या बैठने का कमरा नहीं है उन सब के लिए जो उपस्थित हैं, और शायद आने वाले सप्ताह में स्थान बढ़ाएंगे आने वाले लोगों के लिए जो सभाओं को सुनने आते हैं। लेकिन इस विशेष समय का इसका जो कारण था कि हम मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ने दृढ़ विश्वास की यह चेतावनी दी थी कि इस दिन में कलीसिया के पास यह संदेश होना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यह बाइबल का सबसे अधिक समझने वाला संदेश है, क्योंकि इस समय पर यह मसीह को उसकी कलीसिया में प्रकट करता है। तब किसी के पास विश्वास नहीं हो सकता है या नहीं जानता हो कि वे क्या कर रहे हैं या वे कहां जा रहे हैं, जब तक कि उनके पास कुछ न हो, कुछ तो ऐसा ताकि अपने विचारों को आधार बनाए और विश्वास पर हो। इसलिए यदि वचन इन अंतिम दिनों में और समय की परिस्थिति में मसीह को हम पर प्रकट कर चुका है, यह हमारे लिए अच्छा होगा कि इसे ढूंढे और जाने कि हम कहां पर हैं। अब हमें खेद है कि हमारी कलीसिया ज्यादा बड़ी नहीं है, किसी दिन हम ऐसा होने की आशा करते हैं। और इन पिछले चार दिन में विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की किताब के ऐतिहासिक भाग पर इसे अध्ययन कर रहा हूँ, मैं उन चीजों से होकर गया हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कभी ऐसा हुआ था, और ये यहाँ तक मेरे लिए एक एहसास को लाया। इस सात कलीसिया युग के बाद मैं इस पर से होते हुए आया हूँ, मैं एक और ऐसी ही श्रृंखला को लेना चाहता हूँ, सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया एक साथ, और बस इतिहास और वचन के जरिए से ले लूंगा, जैसे एक बार मैंने प्रयास किया था एक उपदेश पर लेने के लिए सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता जो बाइबल में पाई जाती है। और हम कुछ कुर्सियां लेने की कोशिश करेंगे, जब मैं सोच रहा हूँ कि लोग बैठने का प्रयास करते हैं, और हम इसे ले लेंगे कुछ कुर्सियों को, और ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पीछे कमरे को भरने की कोशिश करेंगे और बाहर और कुछ यहाँ वहाँ, ताकि हम सभाओं के दौरान कुछ और लोगों को बैठा सकते हैं। अब इस पर मैं आप में से हर एक से पूछना चाहूँगा जो इन बातों के बारे में वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं, जो हर समय आते हैं कि हम इसे समझाने जा रहे हैं। और मैं उत्तरदायित्व नहीं होऊंगा, या मैंने अपने आप में नहीं सोचा उत्तरदायित्व नहीं हूँ इस महान प्रकाशित वाक्य की किताब सात कलीसिया युग, लेकिन मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हूँ, क्योंकि जैसे यह मुझे प्रकट करता है वैसे ही मैं इसे लेने के लिए आता हूँ। स्वाभाविक इतिहास, जो कि सबसे प्रमुख इतिहासकारों में से मैंने लिया, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं ठीक अभी अपने अध्ययन के कमरे में बैठा हुआ था, लगभग पांच या छह व्याख्याओं की किताबों को देखा, हिस्लॉप के टू बेबीलोन, फॉक्स बुक ऑफ द मार्टियर्स और अन्य महान किताबों को, जैसे मैंने नीसिन परिषद, उस पर लगभग चार किताबें, हर एक किताब में लगभग 400 पन्ने हैं, और वहाँ नीसिन परिषद और सारे इतिहास हैं जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे चुंबकीय टेप से हम सात कलीसिया काल पर एक व्याख्या को लिखने जा रहे हैं, जिससे कि हम सारे संसार में भेज सकते हैं, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं, हम अंत के समय पर हैं। यह मेरे हृदय पर कभी भी इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ जब तक अंतिम चुनाव नहीं हो गए, और उसके बाद मैंने देखा कि हम कहां पर थे, तब पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट करने लगा कि लोगों को सचेत करूं और इस बात को रखूं, और मैं इस तरह पर्याप्त रूप से एक कलीसिया में यह नहीं कर सकता हूं। और तब यदि मैंने बैठकर और बस किताब को लिखा, मैं महसूस करता हूं कि यदि मैं पुलपिट पर गया और मसीहों के बीच में पवित्र आत्मा की प्रेरणा मुझ पर आ गई मेरी सहायता करने के लिए, तब मुझे इसके बाद किताब लिखने के लिए काफी बातें मिलेगी मेरे इन बातों को टेप में से लेने के बाद, क्योंकि वहां टेप पर हमें इसकी प्रेरणा मिलती है। वे किताबें अवश्य ही एक तरह से थोड़ा सा स्पष्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम उसमें बातों को डालते हैं जो हम टेप में नहीं डाल सकते हैं, और हम अपने आप से दोहराने में बहुत समय ले लेते हैं, या मैं ऐसा करता हूँ, और फिर किताब में ये सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हम ये सब लेने का प्रयास करेंगे जितना हम कर सकते हैं टेपों पर। अब हर एक रात को साहित्य और इत्यादि की वे टेप भाइयों के पास होंगी, ठीक वहाँ इमारत के बाहर। अब मैं हो सकता है हर रात को यहाँ नहीं हो सकता हूँ, जैसे परमेश्वर की महिमा के लिए हमने अपने आप पर लेने का प्रयास किया है, ताकि 7 रातों में 7 कलीसिया के संदेश या 7 कलीसिया युग को लेकर आए, हर रात को एक एक युग को लेते हुए, जैसे सोमवार रात को इफिसुस, मंगलवार की रात को स्मुरना, बुधवार की रात पिरगमुन, गुरुवार की रात हुआचिरा, शुक्रवार की रात सर्दिस और शनिवार की रात फिलाडेल्फिया, और रविवार सुबह और रविवार की रात लौदिकिया कलीसिया युग जिसमें हम रह रहे हैं। मूल कलीसिया के ऐतिहासिक बातों को बताते हुए और लेखकों और इतिहासकार उस युग के दूत और संदेश और कलीसिया की दौड़ जैसा कि इसमें से होते हुए इस समय तक आए हैं, और यह देखना अद्भुत है कि उस वचन की हर एक भविष्यवाणी इतिहास के साथ दृढ़ रूप से पूरा करती है, बस ठीक ठीक इसके विचारधारा तक। इसने मुझे यहाँ तक कल बहुत ही चकित कर दिया, यहाँ तक मैं पढ़ता ही रहा जब तक मुझे महसूस नहीं होने लगा कि मेरी आंखें सूज गई है और मैं बाहर आ गया, और मैंने पत्नी से कहा, मैंने कभी इस तरह से सपने में भी नहीं सोचा था, समझे ये कितना महान था। और अब कभी कभी मैं हो सकता है इस सब को एक ही रात में नहीं ले सकूं, कलीसिया को, कलीसिया के लिए संदेश को, और यदि मैं इसे एक ही रात में नहीं ले सकता हूं, तो अगली सुबह 10 बजे ले लूंगा। हर रात को घोषणा की जाएगी जो बाकी लोग आकर और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इसे टेप करें। मैं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक दिन में, ताकि इसे लाने की कोशिश करूं बाकी के संदेश को, क्योंकि वे इसे टेप पर सुन सकते हैं। ना ही हमने घोषणा की है कि कोई भी चंगाई की सभा नहीं होगी, क्योंकि हम बाइबल के भविष्यवक्ता के शब्दों के नीचे बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तब हमारे पास अभी हाल ही में एक चंगाई की सभा हुई थी, इसके बाद जब ये सभाएं समाप्त हो जाती हैं, तब हमारे पास फिर से उसी स्थान पर एक चंगाई की सभा होगी। लेकिन अब मैं इसे वास्तव में स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कि अब हर कोई वहाँ पर इसे याद कर रख सकता है। ये हो सकता है काटेगा और अलग करेगा और हम सभी को एक बड़ी हिलावट को देगा, लेकिन मैं वचन प्रचार करने के अलावा किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। ये ऐसा ही है, बस सीधे वचन को पकड़े रहूँगा। और बहुत सी बार हो सकता है इस कलीसिया के युगों में, हो सकता है किसी संप्रदाय पर दोष को लगाए, और यदि ये ऐसा करता है तो इसका अर्थ कठोरता से नहीं है, यह तो केवल यह बताना है कि वचन ऐसा कहता है और मेरे पास इसका जो प्रकाशन है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं इसमें गलत हूँ, तो इसे मेरे प्रति कुछ विरोध में मत रखना, केवल मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे दिखाए कि क्या सही है, क्योंकि मैं अवश्य ही सही होना चाहता हूँ। और फिर एक और बात, यह महसूस करते हुए कि मेरे पास जो जिम्मेदारी है इस तरह की एक सभा में लोगों को इसकी शिक्षा देते हुए, कि पवित्र आत्मा मुझे उन शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा जो मैं इस पुलपिट में से कहता हूँ। इसलिए आप देखते हैं कि हम इस पर कितना दृढ़ता पूर्वक पहुँच रहे हैं। अब हमारे मुझे यह कहीं तो और मिल गया होता था, लेकिन यह शिक्षा होने की वजह से, तो हमारे बाहर सभाओं में जो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, हम में से हर एक के पास एक विचार होता है या परख होती है, या जैसे जैसे युगों में से होते हुए किया गया है, और हमारे पास अपनी अपनी कलीसियाएं हैं, और हमारे कलीसियाओं ने हमें जो भी सिखाया है और हम क्या विश्वास करते हैं। मुझे किसी और के कलीसिया में जाना पसंद नहीं है, या उस तरह के लोगों के बीच में, और ऐसा कुछ कहें जो लोगों को सिखाया गया हो जो इसके विपरीत होता है, क्योंकि कुछ भी हो, मैंने स्पष्ट रूप से प्रयास किया है, अपने कथन को दिया है, यदि कोई मनुष्य कैथोलिक है और वह कैथोलिक कलीसिया के उद्धार पर निर्भर है तो वह खत्म हो जाता है, यदि वह बैप्टिस्ट है, बैप्टिस्ट कलीसिया पर निर्भर है तो वह खत्म हो जाता है, या एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया पर निर्भर करता है कि उसे बचाए, वह खत्म हो जाता है, लेकिन कोई भी कलीसिया। लेकिन यदि वह व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक उस कलवरी पर मसीह के समाप्त किए हुए कार्यों में विश्वास पर विश्राम कर रहा है, तो वह बच जाता है। मैं परवाह नहीं करता हूँ कि वो कौन सी कलीसिया से संबंध रखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम बचाए गए हो और यह अनुग्रह से है। अब कभी कभी ऐसा करने में फिर मैं सोचूंगा, यहाँ मेरी अपनी छोटी सी इमारत में जिसे हमने बहुत वर्ष पहले आरंभ किया था, सब कुछ पुराने ठोस पत्थरों के ब्लॉक और चीजों से बनाया था और यह एक प्रकार से हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। हम यह नापसंद करते हैं, इसे बदलते हुए देखने से नापसंद करते हैं, क्योंकि यह वो स्थान है जहाँ परमेश्वर पहले हमसे मिलना आरंभ किया। जब यहाँ तक इसमें कोई हमारे पास मंजिला भी नहीं थी, लेकिन इसमें एक स्थान होना है क्योंकि अब ये पुराना भी हो रहा है और हम यहाँ इस एक कलीसिया के साथ इस ब्लॉक को भरने के लिए यहाँ एक इमारत के निर्माण की योजना में है। अब उस वक्त तक मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं प्रचार के कार्य क्षेत्र पर वापस आता हूँ, जहाँ पर मैं भाइयों को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा और या संदेश और इत्यादि के द्वारा ठेस न पहुँचाऊँ, तब ये मुझे अधिकार देता है कि मैं खुद की राय को व्यक्त करूं यहाँ पुलपिट से। और सो यदि आप कहते हैं मुझे इस बात से थोड़ा अलग सिखाया गया है, मैं और तब इसमें हम तब किसी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं जो भी आना चाहते हैं, समझे, यहाँ कोई भी इसे प्रायोजित नहीं कर रहा है या जो कुछ भी है, यहाँ पर ये भवन है और जो भी आना चाहता है उसका बस आने के लिए स्वागत है, बस सीधा आ जाओ। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बाइबल को लेकर आएं हर एक सभा में और एक कलम और कागज को लाएं। और अब सारी टिप्पणियों और इत्यादि के साथ मैं सारी किताबें नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने कुछ लिख कर रखा है, यहाँ कागज पर लिख दिया है। इतिहास और टिप्पणियों से हर बार कुछ छोटी छोटी बातों को लिख देता हूँ और इत्यादि, जिससे कि मैं यहाँ लिखी हुई बातों में से तब पढ़ सकता हूँ बजाय किताब को लेकर और पन्नों को आगे पीछे पलटाने के। हालांकि जब ये वचन की बात आती है तो हम बाइबल का उपयोग करेंगे और टिप्पणियों में मैं समझाऊंगा या इतिहास में से इतिहासकार कौन था जिसने इसे कहा और इत्यादि। उसके बाद अवश्य ही आने वाली किताब के वृत्तांत में, क्योंकि उसके बाद हम इसे सही प्रकार से टाइप कर सकते हैं और सब कुछ सही रीति से कर सकते हैं। अब हम वह सब कुछ करेंगे जिससे हम जल्दी से आरंभ कर सकते हैं और जितनी जल्दी संभव हो सके पूरा करेंगे। यह 8 दिन की सभाएं होंगी रविवार से लेकर रविवार तक। आज सुबह मैं प्रकाशित वाक्य की किताब से प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय आरंभ कर रहा हूं और प्रकाशित वाक्य 3 भागों में निर्धारित किया गया है और जो पहले के 3 अध्याय हैं उसमें से हम इन 8 दिनों में बताते रहेंगे, जबकि एक कलीसिया काल के लिए हमें 1 महीना लग सकता है, लेकिन हमें केवल ऊपर की मुख्य बातों को लेना होगा जब हम इसे बताते हैं। फिर जब आपको किताब मिलेगी तो इसे विस्तार में लिखा जाएगा। अब प्रकाशित वाक्य पहले 3 अध्याय जो कलीसिया के साथ व्यवहार करता है, उसके बाद कलीसिया गायब हो जाती है, हम उसके बाद इसे अंत समय तक नहीं देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 3 तक जो कलीसिया के लिए है, प्रकाशित वाक्य 4 से 19 इसराइल के लिए है जो एक राष्ट्र है, और 19 से 22 जो दोनों के लिए एक साथ है, और अंत में विपत्तियां और चेतावनियां और इत्यादि 3 भागों में निर्धारित है, देखा। और हम पहले 3 अध्यायों को ले रहे हैं जो कलीसिया से संबंधित है और जिस कलीसिया युग में हम रह रहे हैं। अब पहले यह एक प्रकार से रूखा रूखा लग सकता है, क्योंकि हमें पीछे जाकर और एक बुनियाद को बनाना है। मैंने प्रार्थना की है और इसका अध्ययन किया है और वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था, पवित्र आत्मा के अनुभूति को पाने का प्रयास करने के लिए कि कौन से तरीके से इसे रखा जाए जिससे लोग इसे देख सके और जिससे कि आप हो सकता है इसे देखने में यह स्पष्ट हो जाए और आपका मसीह के नजदीक आने का कारण बने, क्योंकि हम अंत समय पर हैं। और यह एक ऐसी अद्भुत बात है, जैसा कि मैं इतिहास का अध्ययन कर रहा था यह जानने के लिए कि उस कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ और यह कैसे दूर हो गई और किस बात ने जगह ली थी, और यह देखने के लिए कि परमेश्वर का छोटा सा बीज उन हर एक युगों में से होते हुए आगे बढ़ा, लगभग पूरी तरह से बाहर आ गया उस एक स्थान से। अब कल रात हम आरंभ करेंगे और एक यहाँ चार्ट है, चार्ट नहीं, मेरा मतलब एक ब्लैक बोर्ड है जिसे मैं आपको एक तरह से ब्लैक बोर्ड से सिखाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रविवार स्कूल के शिक्षक उसमें से एक के पास एक ब्लैक बोर्ड होता है, मैं इसे पीछे देख रहा हूँ, मैं देखरेख करने वाले को लेकर इसे यहाँ सामने ऊपर लगा दूंगा जिससे मैं उस ब्लैक बोर्ड से सिखा सकता हूँ और इस पर लिख दूंगा जिससे आप निश्चित हो जाएं और आप इसे अपने कागज पर बना सकते हैं और इत्यादि। और इसे नजदीक से समझ सकते हैं जब हम इसे ला सकते हैं। लेकिन मैं आरंभ करने से पहले केवल यह कहना चाहता हूँ, कलीसिया के युगों के आरंभ को देखें और ये देखें कि कैसे प्रेरितों, सिद्धांतों और उन बातों को जिसे उन्होंने सिखाया और बाइबल के सिद्धांत, और फिर उस कलीसिया को देखें जो प्रेरितों का दूसरा दौर था, यह किस तरह से धुंधला होना आरंभ होने लगता है जो वास्तविक सच्ची शिक्षा थी। तीसरा दौर बहुत दूर होता चला गया। चौथे दौर पर यह एक ठंडे गुनगुने में धुंधला हो गया था। उस कलीसिया ने एक गुनगुने कलीसिया को लेकर आया और फिर एक आत्मा से भरी कलीसिया, जिसे मैं इसे ईश्वरीय सम्मान के साथ कहता हूँ, हर एक मनुष्य के धर्म के लिए आरंभ से लेकर इस समय तक वास्तविक सच्ची कलीसिया या पेंटिकॉस्टल कलीसिया रही है। यह सच बात है, परमेश्वर ने इस कलीसिया को बचा कर रखा है। मैं अक्सर सोचता हूँ जब यीशु ने टिप्पणी की, कहा, डर मत छोटे झुंड, यह तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य को दे, मैं अक्सर सोचता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं इसे अब समझता हूँ। पिछले हफ्ते हमारी शेवरेपोर्ट लुइजियाना में सभा हुई, जो मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी आत्मिक सभा थी जिसमें मैं गया हूँ, शेवरेपोर्ट। मेरे पास दो दिन की छुट्टी थी और मैं केंटेकी में भाई वुड के साथ वहाँ गया, जो कलीसिया के डीकन में से एक हैं, या मेरा मतलब खजांची हैं। हम शिकार करने के लिए गए, हम जंगल में चले गए। मैंने पहली गिलहरी पर गोली चलाई और मैंने कहा मैं बस इंतजार करूंगा, क्योंकि कोई तो कुछ कुत्तों को लेकर आ रहा था, और मैंने कहा मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक गिलहरी छेद से बाहर नहीं आ जाती। वे पेड़ों में भागती रहती है, छेद में चली जाती है और वे छिपी रहती हैं। अब मैंने कहा जब वे बाहर आती हैं, मैं यहाँ बैठकर और इंतजार करूंगा, क्योंकि ये वास्तव में ठंडा और रूखा मौसम था और कान जल रहे थे, और आप घाटी से होकर आने वाली तेज हवाओं को तो जानते हैं। मैंने कहा मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक गिलहरी बाहर नहीं आ जाती, और ज्यादा समय तक मैं वहाँ नहीं बैठा था कि तभी पवित्र आत्मा ने कहा, उठ और उस स्थान पर जा जिसे तुम शिकारियों की घाटी कहते हो, वहाँ मैं तुमसे बात करूंगा। और मैं इस स्थान पर चला गया जिसे मैंने शिकारियों की घाटी नाम रखा था, क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं उन घाटियों का नाम मैंने खुद रखा था, क्योंकि इससे मैं जान पाता था कि मैं कहाँ पर था। शिकारियों की घाटी क्योंकि उनके पास, मैं वहाँ पर गया और मैंने एक पेड़ पर 16 गिलहरियों को बैठा हुआ देखा, एक दायरे से गोली को चलाया और वहाँ से चला गया, और यही वो शिकार होता जिसे किया जाता, तो मैं इसे शिकारियों की घाटी कहता हूँ। और उसने मुझसे कहा, जिस स्थान को तुम शिकारियों की घाटी कहते हो, ऐसा नहीं है कि उसने इसका नाम रखा, लेकिन मैंने इसका नाम रखा। तब मैं उस घाटी की ओर बढ़ गया और एक सफेद बतुल के पेड़ के नीचे बैठ गया और लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया और कुछ भी नहीं हुआ। मैं जमीन पर लेट गया, खुद को ओंधे मुंह जमीन पर टिका दिया, अपने हाथों को फैला दिया। तब उसने मुझसे बात की, और जब उसने बात की तो वे वचन जो उसने मुझ पर प्रकट किए, यही वचन जिस पर हम आज सुबह आ रहे हैं, मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और फिर जब मैं शेवरेपोर्ट लुइजियाना में गया, तो एक महिला जो कि एक दान पाई हुई महिला है, उसका नाम श्रीमती श्रेडर है। कई वर्ष पहले जब प्रभु के दूत ने मुझसे पहली बार यहाँ नदी पर मुलाकात की थी और उस उजाले में दिखाई दिया, और वे शब्द जो उसने वहाँ कहे, 11 वर्षों के बाद जब वे एक सभा में चलकर गया तो यह छोटी सी महिला उठकर अन्य भाषा में बोलने लगी, और इसका अनुवाद किया गया था। यह शब्द दर शब्द वही था जिसे दूत ने कहा था, और यह वही छोटी महिला है। जब मैं भवन में चलकर गया, या शिवरेपोर्ट में स्थान था जिसमें हम थे, लाइव टैबरनेकल, पवित्र आत्मा उस महिला पर आ गया और शब्द दर शब्द वैसा ही कहा जो दूत ने वहाँ पहाड़ पर कहा था। तब आत्मा ने आगे आकर और अनुवाद को किया, प्रकाशन के द्वारा आने वाली बातों को बताते हुए, भविष्यवाणी के द्वारा वही बातें जो कि अगली रात की सभा में जो होने जा रहा है, और एक बार भी यह असफल नहीं हुआ था। इससे पहले सभा में एक छोटी सी महिला खड़ी हो गई, एक बैप्टिस्ट महिला वहां आ गई, जो यह नहीं जानती थी कि वह क्या कर सकती है, और वह सभा के बीच में खड़ी हो गई थी, और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और उसने अन्य भाषा के साथ बोलना आरंभ कर दिया, जो शेवरेपोर्ट की पहले बैप्टिस्ट कलीसिया की एक बैप्टिस्ट महिला थी, और फिर वह नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है, और फिर इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके, पवित्र आत्मा ने अनुवाद को दिया, कहा यहोवा यो कहता है, 3 महीने के अंदर मूसा, एलिया और मसीह की आत्मा वहाँ होगी, इस भवन में सेवकाई कर रही होगी। वहाँ यह पूरी रीति से ऐसे ही हुआ। मेरिडियन मिसिसिपी के एक बैप्टिस्ट व्यक्ति ने अपने फ्रिज पर हाथ को डाला, फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई और वह अन्य जुबान में बोलने लगा, नहीं जानते हुए वह क्या कर रहा था। और इससे पहले कि वह समझ सके कि वह क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा ने वापस बात की और कहा, शिवरेपोर्ट लुइजियाना जाओ, मेरा दास तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। और वह वहाँ पर आया, उसने कहा मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ओह प्रभु, हम प्रभु के आगमन से ठीक पहले के दिनों में रह रहे हैं। यह छोटी कलीसिया हमेशा ही कम संख्या में रही है, पेंटिकॉस्टल, मेरा मतलब संस्थागत पेंटिकॉस्टल लोगों से नहीं है, मेरा ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन वे जो पेंटिकॉस्टल अनुभव वाले लोग हैं। पेंटिकॉस्टल कोई संगठन नहीं है, पेंटिकॉस्ट एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें मिलता है जो भी इसकी इच्छा रखता है, कैथोलिक, यहूदी, प्रोस्लेटी, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, जो कोई भी चाहे वो आए। ये एक अनुभव है जो व्यक्तिगत के लिए है। परमेश्वर एक संप्रदाय के साथ व्यवहार नहीं करता है, न ही वह अन्य जातियों के साथ, एक जाति की नाई या लोगों के साथ, वह तो व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है। जो भी चाहे, वो सफेद, काला, पीला, भूरा होने दो, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जो कोई भी हो वो आए, जो कोई भी हो। मुझे खुशी है कि उसने इसे इस तरह से बनाया। मैं, जैसा कि एक व्यक्ति ने एक बार कहा, मैं बल्कि उसे यह कहते हुए सुनना पसंद करूंगा कि वह मेरा नाम पुकारने के बजाय विलियम ब्रैनम आ जाए, क्योंकि वहाँ एक से अधिक विलियम ब्रैनम हो सकते हैं। लेकिन जब उसने कहा कोई भी आ जाए, मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए है, तो उसी तरह हम सभी महसूस कर सकते हैं, जो कोई भी चाहे वो आए। अब मुझे पता है कि वहाँ बहुत से लोग होटल और मोटल में रुके हुए हैं जो संसार भर से आते हैं। देखा, यहाँ आयरलैंड और विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं जो भेंट करने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन मैं इनसे ठीक अभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं अपना समय इसके लिए लेना चाहता हूँ, आप समझते हैं। जब मैं इन भ्रमण से वापस आया, मैं आमतौर पर वापस आकर किसी को सेवकाई करने के लिए देता हूँ, क्योंकि वे भेंट करने के समय को तय करके रखते हैं, लेकिन ठीक अभी हमें इस कारण से उन्हें छोड़ना होगा। अब इस किताब को आरंभ करने से पहले बस एक बात कहूँगा, आरंभ में एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी, वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ी और उसने एक प्रेरितों की किताब को लिखा। दूसरे दौर में यह दुर्बल होने लगी कलीसिया, यह औपचारिक होने लगी थी। दूसरी कलीसिया का युग यह वास्तव में औपचारिक था, लेकिन वो पेंटिकॉस्टल का छोटा सा बीज आत्मिक रूप से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद यह लगभग 1400 और ऐसे ही कुछ वर्ष एक अंधकार के युग के स्थान में चला गया, एक अंधेरे सतावट के स्थान में। वह छोटा सा पेंटिकॉस्टल युग उसमें से होकर जीवित रहा, यह कैसे बचा रहा मुझसे मत पूछना, यह परमेश्वर का हाथ था। केवल यही एक चीज है जो उसे कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें खम्भों पर खूटे से बांध दिया, और वे पुरुषों को लेते और उन्हें एक खूटे पर उल्टा करके और लकड़ी की कील को लेकर और उनके पैरों में गाड़ देते, और जानवर, कुत्ते उन्हें पीछे से आकर खाने लगते, इससे पहले कि वे मरे उनमें से उनकी आंतों को नोच लेते। महिलाओं को लेते, उनके स्तनों को काट दिया जाता, इस तरह से उनके दाहिने स्तन का चिथड़ा उड़ा हुआ होता और वे खड़े रहते और बस उनका लहू बहता रहता जब तक कि उनका जीवन उनमें से बाहर नहीं निकल जाता। गर्भवती माताओं से बच्चों को ले लेते और उन्हें कुत्तों और सूअरों को खिला देते जब वे उनकी ओर देखती रहती थी, मसीहत को मानने वाले। लेकिन बाइबल ने कहा और यीशु ने कहा, यह बात पूरी होगी कि वे तुम्हें मार डालेंगे, यह सोचकर कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। देखा, और अब वो बात एक और आगे के युग तक बढ़ती जाती है, तब अंत में यह सामने आता है। फिर हम ध्यान देते हैं, जैसे जैसे कलीसिया सुधारक से हटने लगी, वे बातें उस समय से लेकर बाहर निकलती गई और वे आत्मा से दूर होते गए सीधे आगे की ओर, जब तक इस अंतिम युग में नहीं आ गए, जब यह खुद को संगठित कर देते हैं और पशु के निमित्त एक छाप को बनाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आत्मा लोगों के हृदयों में रहेगा जब तक यीशु नहीं आ जाता। इसे होना है, इसे मन में बनाए रखें। हम इसे नक्शों पर बनाएंगे, इतिहास और हर एक चीज को लेंगे और आपको दिखाएंगे कि यह ठीक उसी तरह से है। आप खुद ही इतिहास को लेकर और इसे पढ़ें, देखें कि बाइबल क्या कहती है और फिर इतिहास ने क्या कहा, देखें कि यह किस तरह से बिल्कुल ठीक वैसे ही मिलता है। ओह, हो सकता है हम इन सब बातों को बस एक लंबे कथन के रूप में नहीं लें, लेकिन हो सकता है हम पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे दृढ़ता से पवित्र आत्मा की चेतावनी को लें और दिन और रात प्रार्थना करें। कोई भी बात आपको प्रार्थना करने से रोकने न पाए। हम अंदर जाएंगे या उन महापुरुषों के जीवन को खोद निकालेंगे, कैसे उन्होंने बलिदान दिया था। आप देखेंगे कि आपने इतना अधिक कुछ नहीं किया है। मुझे कभी कभी खुद पर शर्म आने लगती है कि किस तरह से हमारे पास सब कुछ इतना आसानी से मिल गया है और उनके पास सब कुछ कितना कठिन है। वे इधर उधर मारे मारे फिरे। पौलुस ने इब्रानियों 11 में कहा, क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए हमारी गवाही उनके सामने क्या होगी, उस गवाही से ऊपर किस तरह से होगी, और हमारे पास सब कुछ इतना अच्छा है। अब बस सम्मान देते हुए किताब को खोलने से पहले मैं सभी के लिए चाहता हूँ, जो कोई भी हो, बस प्रार्थना के लिए एक पल के लिए खड़ा हो सकता है। अब आप अपने हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना के कुछ शब्द की सांस को लें। प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अनंत जीवन के लेखक और सभी अच्छे और सिद्ध दानों को देने वाले प्रभु, हम आपसे सबसे पहले मांगते हैं, हमें क्षमा कर हमारी सारी लापरवाही के लिए और हमारे पापों के लिए, और हमने जो आपके विरोध में और एक दूसरे के और हमारे साथियों के प्रति जो अपराध किया है। होने पाए इस छोटे से समय पर हमारा एक साथ इकट्ठा होना न ही केवल हमारे अपने प्राणों की उन्नति के लिए हो, बल्कि होने पाए यह हमें इस तरह से स्पष्ट करे और हमें प्रेरित करे, इतना तक कि हम जाकर दूसरों को बताने लगे। होने पाए यह फिर से समर्पण का समय हो, मसीह के संपूर्ण देह को एकजुट करें और रैप्चर के लिए तैयार करें। पिता परमेश्वर, न ही मेरी अपनी भावनाओं से हो, यह जानते हुए कि आपका दास और अन्य सारे दास इस महान कार्य को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, महसूस करते हुए कैसे वे महान पुरुष जो होकर गए, उन्होंने अपने हृदयों पर इस बात को लिया, इसे प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे या उस महान प्रकाशन पर टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे थे, तब हमें एहसास देता है कि हम उनसे कहीं अधिक अयोग्य हैं, लेकिन आप हमारे लिए योग्यता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप इस समय के दौरान कुछ तो विशेष करेंगे, कि पवित्र आत्मा हर एक हृदय में प्रधानता हो जाएगा, बोलने वाले होठों और सुनने वाले कानों का खतना करें। और जब यह सब खत्म हो जाता है और हम इसे आपको समर्पित करें, होने पाए हम इस भवन की चौखट से चलकर जाएं, यह कहते हुए यह हमारे लिए वहाँ पर होना भला था। पवित्र आत्मा ने हमसे बात की जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे, और अब हम सब करने के लिए दृढ़ हैं जब संध्या का उजाला चमक रहा है। इसे प्रदान करें प्रभु। होने पाए इस सभा के दौरान पुरुष और महिलाओं को एक नए सिरे से समझ को लेने का कारण बने। होने पाए आप अन्य जुबान के साथ बोलने वालों को खड़ा करें, अन्य जुबान के अनुवादक को खड़ा करें। होने पाए आप भविष्यवाणी के दानों को खड़ा करें, प्रचारकों, पास्टरों, सुसमाचार प्रचार करने वालों और इत्यादि को खड़ा करें, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। मिशनरियों को खड़ा करें ताकि बाहर क्षेत्र में जाकर और इस महिमा में सुसमाचार को आगे लेकर जाएं। जहां भी वचन जाएगा, होने पाए यह अच्छी भूमि पर गिरे, 100 गुना फल को आगे लाते हुए, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम युग के अंत में रह रहे हैं, जीवन का अंत निकट है। इन चीजों को प्रदान करें पिता, और सब बातों से ऊपर इस समय पर प्रभु आप मेरी सहायता करें उन्हें जो जरूरतमंद हैं, क्योंकि मैं इसे मांगता हूँ जैसे मैं इन सभाओं के लिए खुद को आपके लिए समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सर्वसामर्थी परमेश्वर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमें यह जानकर बहुत आनंद होता है कि आपकी आत्मा हमारे बीच वास करती है। वो हमेशा ही सच्चा रहता है और कभी भी असत्य का वचन नहीं होता है। और अब पिता, आगे आपकी वचन की पुष्टि करें आपकी महिमा के लिए, जब हम पढ़ते हैं और होने पाए हरेक हृदय जैसा कि आपने कहा है तत्पर और तैयार रहें, क्योंकि आगे कुछ तो आने वाला है। यह हो सकता है कि लोग अपने अंतिम चेतावनी को ले लें, ताकि उन चीजों से जिसे वे अभी करते हैं वे सही रास्ते की ओर मुड़ जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र के नाम में जो प्रभु यीशु मसीह है, आमीन।
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
अब प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, पहला अध्याय। अब पहले मैं प्रकाशित वाक्य के पहले तीन पदों को पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने सरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अब इसमें हम इतिहास और इत्यादि के अनुसार किताब का और अब थोड़ा विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे, और हर बार जब आप मुझे उन पन्नों का हवाला देते हुए देखते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो यह वे भिन्न भिन्न बातें हैं जिसे मैंने टिप्पणी करने वालों और इत्यादि से ली है। अब इस किताब का लेखक योहन्ना है, संत वो दिव्य योहन्ना जिसने भविष्य की पीढ़ी एक को लिखा है, बी मसीह युग के सात अलग अलग युग की अवधि के सात युगों के लिए निर्देशित किया, प्रेरितों के दिनों से लेकर एक एक युग जो प्रभु के आगमन तक है। और अब हर एक युग हमारे उत्तराधिकार में प्रकट होता है, हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण से लेकर उसके फिर से आगमन तक। हर एक कलीसिया का युग उसकी आत्मिक स्थिति का वर्णन करता है। ई हर एक कलीसिया का युग ध्यानपूर्वक अपने आप में उसके वचनानुसार के जरिए और उनके प्रति आत्मिक बात को बता सकता है जैसा कि आत्मा बोलता है। प्रत्येक युग अपने आप को ध्यान से देख सकता है। हर एक युग मसीह के सच्चे दाखलता को लेकर आती है। वो समझदार कुआरी और हर एक युग में दाखलता को जोड़ा या कलम किया गया था जो मूर्ख कुआरी है। इतिहासकार मानते हैं यह योहन्ना का जीवन है। योहन्ना अपने वर्षों के अंतिम समय में एफिसस शहर में रहा और वहीं पर मरा। वह पतमुस के टापू पर था। उस समय उसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा था। यह उसके जीवन की कहानी नहीं थी बल्कि भविष्य के युग में मसीह की कहानी थी। देखा, यह एक भविष्यवाणी थी। योहन्ना का जीवन नहीं, मसीह का जीवन नहीं, लेकिन आने वाले युग की भविष्यवाणी थी। यह उसकी भविष्यवाणी का कथन नहीं था, लेकिन पूरी तरह से प्रभु के उत्साह के शब्द थे। यह संत देवीय योहन्ना का प्रकाशन नहीं था, लेकिन मसीह प्रभु का प्रकाशन था। यह एक नए नियम की अंतिम किताब है, फिर भी यह सुसमाचार के आरंभ और अंत समय के काल को बताती है। बाइबल के विद्वान सहमत होते हैं। सात कलीसिया के युग की पत्री, जिसे लिखा गया था भविष्य सूचक के ढंग में, भविष्य के युग के लिए पौलुस ने अपने दिन में वर्तमान के सात कलीसिया के जीवन और महिमा के बारे में लिखा। योहन्ना ने भविष्य में की सात कलीसियाओं की महिमा और जीवन के बारे में लिखा, जो योहन्ना इन सात पास्टरों या संदेश वाहकों को संबोधित कर रहा था, जो सीधे सारे मसीहों के लिए है जो इस सात भिन्न दूतों के समय में थे। अब प्रकाशित वाक्य की किताब, अब हम लेने जा रहे हैं, जैसा हम इसका सुबह और इस शाम के लिए इसका विश्लेषण करेंगे, और लगभग हम 11 बजे और 11:30 तक बाहर जाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर आज रात 7 बजे फिर से आरंभ करेंगे। अब इस पहले अध्याय का विषय, पहला पद, यह वास्तव में खुद के लिए बताता है, क्योंकि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। दूसरा पद संत देवीय योहन्ना का है, जो लेखक और सेवक है। तीसरा पद आशीषों को उच्चारण करता है। चौथे पद से लेकर छठवां पद कलीसिया को अभिवादन करता है। सातवां पद घोषणा करता है। आठवां पद यीशु मसीह की सर्वोच्च दैविकता है। नौ से लेकर बीसवां पद पत्मुस का दर्शन है। और चौदहवां और पंद्रहवां पद भी उसके व्यक्तित्व के सात प्रकार की महिमा का वर्णन करता है। ओह, यह सुंदर बात है जब हम मसीह को उसके सात प्रकार के व्यक्तित्व में देखते, उसके व्यक्तित्व के सात प्रकार के अस्तित्व में, उसके महिमा में, पुनरुत्थान में। अब शीर्षक चरित्र का वर्णन करता है। यीशु मसीह का प्रकाशन, संत दिव्य योहन्ना का प्रकाशन नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन। अब प्रकाशन शब्द यूनानी के लिए अपोलेप्स, जिसका अर्थ है खुलासा होना, और मैं उस शब्द को लेकर और इसे खोज रहा था। इसका मतलब है अंतर्भास। ये है जैसे एक मूर्तिकार जो एक बड़ी मूर्ति को बनाता है और वो इसे एक पर्दे से ढक देता है, और उसके बाद वो जाकर और इस पर्दे को फाड़ देता है और खुलासा करता है कि पर्दे के पीछे क्या है। यह एक उजागर करना है। और ये किताब यीशु मसीह के व्यक्तित्व को इतना अधिक नहीं खोलती है, फिर भी यह निश्चित रूप से उसकी दैविकता और उसके सात प्रकार के व्यक्तित्व की बात करती है, और उन चीजों की भी बात करती है जो वो है, जैसे याजक, राजा और इत्यादि। लेकिन यह उसके कार्यों के भविष्य का खुलासा करता है, उसके सात कलीसिया युगों में जो आने वाले हैं। यह जब हमारा प्रभु धरती पर था तो चेलों ने उससे पूछा और कहा, गुरु क्या तुम इस समय पर राज्य को वापस इज़राइल को लौटाओगे? और यीशु ने कहा, इस घड़ी और समय को जानना तुम्हारा काम नहीं और कोई भी नहीं जानेगा। कहा, यहाँ तक कि पुत्र भी, जैसा कि अब तक नहीं जाना, लेकिन उसकी मृत्यु, दफनाने, पुनरुत्थान और महिमा में उठा लिए जाने के बाद उन्होंने परमेश्वर से कलीसिया के भविष्य को प्राप्त किया। तब वह वापस आता है ताकि संदेश को कलीसिया के लिए लेकर आए और उनके आगमन का यह संदेश और युग में से होते हुए उसकी कलीसियाओं की स्थिति को बताए। वह अपनी मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान से पहले ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह अभी तक इसे नहीं जानता था। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि पवित्र शास्त्र यहाँ कैसे बताता है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने मसीह को दिया, कैसे परमेश्वर उस पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रकाशन दिया और उसने अपने दूत को योन्ना के पास भेजा जो इन चीजों को दर्शाता था, जो थी, जो है और जो होने वाली है। और यह बहुत ही खूबसूरत रूप से स्थित है। अब इस आने वाले महान युग में जो योन्ना ने देखा, अब ये प्रकाशन पूरी तरह से उसे दिया गया था ताकि मसीह के विशिष्ट उद्देश्य को बेपर्दा करे, वो क्या होगा और हर युग में कैसा बनेगा। यही वो कारण है कि मैंने आज सुबह कहा, अपना मन सच्ची कलीसिया पर रखें। सच्ची कलीसिया पेंटिकॉस्ट के दिन से आरंभ हुई। वहाँ कोई धर्मशास्त्री नहीं, ना ही बाइबल का विद्वान या ना ही कोई इतिहासकार जो कभी भी कह सकता है कि यह मार्टिन लूथर, वेस्ली, कैथोलिक युग या किसी अन्य युग के दिनों में आरंभ हुआ या पेंटिकॉस्ट में आरंभ हुआ। यही कलीसिया का शुभारंभ होना था, यह शुरुआत थी। इसलिए किसी के साथ इस पर चर्चा करते हैं तो आप पेंटिकॉस्ट के उस फाटक पर खड़े हो जाएं और वे तब कहीं और नहीं जा सकते। बिल्कुल जैसे कि एक खेत में खरगोश को रखना, आप जानते हैं जहाँ हर कहीं छेद होते हैं तो आप इसे बंद कर देते हैं, वो ठीक उसी स्थान पर वापस आएगा जहाँ वो अंदर गया था। तो इसी तरह से जो कोई भी कलीसिया और कलीसिया के युगों और पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में बात करता है, आप मूल बात पर वापस आएंगे उस शुरुआत में। इसे वहाँ पर वापस आना है क्योंकि परमेश्वर अनंत है और वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए अनंत होने के नाते वह ऐसा यहाँ कुछ नहीं कर सकता है और वहाँ पर इसके विपरीत कुछ और करे। हर बार वैसा ही करता है जैसे उसने इसे पहली बार किया था। जैसे पतरस ने कहा, उस दिन जब अन्य जातियों ने पवित्र आत्मा को पाया, उसने कहा, क्या हम पानी को रोक सकते हैं? यह देखते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है जैसा कि हमने आरंभ में पाया था। यीशु जब वह धरती पर था, बोला और कहा, यह किसी ने आकर कहा, क्या यह हमारे लिए नियम के अनुसार है किसी भी कारण से अपनी पत्नियों को दूर करें? यीशु ने कहा, उसने नर बनाया, नारी बनाई, इस कारण से एक पुरुष। उसने कहा, लेकिन मूसा ने तो हमें तलाक के बारे में लिखा। यीशु ने कहा, आदि से ऐसा नहीं था, आदि में वापस जाओ। इसलिए यदि हम कलीसिया के युग के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमें आदि में वापस जाना है। हर एक बोले गए कथन को एक तरफ रखते हुए जिसे मनुष्य के युग में से होते हुए कहा गया है, यह बाइबल में किसी भी किताब की सबसे आधिकारिक किताब है। यह एकमात्र ऐसी किताब है जिस पर मसीह ने अपनी मोहर लगाई है। यह एक आशीष के साथ आरंभ होती है और एक शाप के साथ समाप्त होती है। धन्य है वो जो पढ़ता है और शापित है वो जो इसमें से कुछ निकालता है। यह एकमात्र ऐसी किताब है जिसे मसीह ने स्वयं लिखा। संपूर्ण बाइबल में से उन 10 आज्ञाओं को उसने अपनी उंगली से लिखा। यह सही बात है, यहूदियों ने उन आज्ञाओं को पकड़े रखा और आज यह वो प्रकाशन है। और यदि शैतान बाइबल में किसी भी किताब से घृणा करता है तो यह प्रकाशित वाक्य की किताब है। वहाँ दो है, वह सारे वचन से घृणा करता है और यह वचन का पूरा सिद्धांत है। लेकिन यदि कुछ भी यह ज्यादातर घृणा करता है तो वह प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति है, क्योंकि उत्पत्ति आरंभ को बताती है। प्रकाशित वाक्य से प्रकट करता है कि अंतिम दिन में उसके साथ क्या होने वाला है। 1000 साल के लिए बांधा जाएगा उसके बाद उसे और झूठे भविष्यवक्ताओं और पशु को आग की झील में जिंदा फेंक दिया जाएगा और वह उत्पत्ति की किताब पर आक्रमण करेगा। इसके प्रमाणित होने पर आक्रमण करता है, वह कहेगा ये प्रमाणित नहीं है और वह लोगों के दिमाग में हलचल मचा देगा। देखो कि शैतान कहाँ पर पड़ा है, उस उत्पत्ति की किताब या प्रकाशित वाक्य की किताब में जो पहली और अंतिम है। और प्रकाशित वाक्य की किताब में बाइबल में बाकी सारी किताबों की तुलना में इसमें अधिक चिन्ह है, इसमें और अधिक चिन्ह है क्योंकि यह भविष्यवाणी की किताब है। यह एक भविष्यवाणी की किताब है, इसलिए इसे भविष्यवक्ता की कक्षा के द्वारा समझा जाना है। यह किताब हर किसी के लिए नहीं है, इसे शायद ही कोई समझ सकता है। यह किताब एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है। व्यवस्था विवरण पर यह कहता है छिपी हुई बातें वो प्रभु की है। यह सही बात है और वह हम पर प्रकट करता है उसके बच्चों को छिपी हुई बातों को। तो यह उनके लिए नहीं, शारीरिक मन वचन की महान बातों को समझ बूझ नहीं सकता क्योंकि यह उनके लिए मूर्खता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं, यही है जिनके लिए यह किताब कलीसिया को लिखी गई थी। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य एफिसियस के कलीसिया के लिए, इस मुर्डना की कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लिए आगे तक यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, मैं इसे पसंद करता हूँ। और ध्यान देना, यह वचनों की संपूर्णता भी है, सारी संपूर्णता। और भौगोलिक रूप से इसे बाइबल के अंत में सही स्थान पर रखा गया है। सारी बात का प्रकाशन यहाँ पीछे एक आशीष के साथ रखा गया है उनके लिए जो इसे पढ़ता है और इसे सुनता है, उनके लिए एक शाप है जो इसमें जोड़ेगा या निकालेगा। यह पूर्ण सिद्धांत है, ओह परम सत्य है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। और जब कोई मनुष्य इसमें कुछ भी निकालने की कोशिश करता है या इसमें कुछ भी जोड़ता है तो परमेश्वर ने कहा कि वह उसी भाग को जीवन की किताब से बाहर निकाल देगा। समझे, यदि वह इसमें जोड़ेगा तो वह किताब से अपना भाग निकाल लेगा। इसलिए जब हम अपने प्रभु के बहुत से प्रकार के प्रकाशन को देखते हैं, वो कौन है, वह क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ जोड़ेगा या इससे कुछ निकालेगा तो वह एक गलत भविष्यवाणी होती है। बहुतों ने यह कहने के लिए कोशिश की है उसके बाद में जो उनके पास कुछ तो कहने के लिए था, लेकिन यह प्रभु यीशु का संपूर्ण प्रकाशन था उसके कलीसिया युग में और उसके दिन में हमारे प्रभु का प्रकाशन है। अब बेपर्दा होना का यूनानी शब्द कुछ तो जो छुपाया गया है, प्रकट होना मसीह का। अब अगला पद हम दूसरे पद में पाते हैं। पहला पद मसीह का बेपर्दा होना है, वो प्रकाशन या खोलना। ओ कैसे अंतिम युग और प्रभु का आगमन प्रेरितों के लिए ढका हुआ था। उन्होंने सवाल को पूछा लेकिन केवल एक ही जीवित रहा, उसके पास प्रकाशन था और फिर भी उसने इसे नहीं समझा क्योंकि इतिहास अभी तक बना नहीं था। अब इस किताब का इतिहास या इस किताब का संदर्भ आसिया माइनर छोटे भाग में सात कलीसिया को निर्देशित किया गया था। यह तब था, यह उन सात कलीसिया की ओर निर्देशित किया गया था। उस दिन पर उन सात की तुलना में और भी अधिक कलीसियाएं थी, लेकिन उनमें से हर एक कलीसियाएं महत्वपूर्ण थी। वे उसके विषय में महत्वपूर्ण थी जो विशेषता उस कलीसिया में थी जिसका पालन आगे उस युग में से होते हुए किया जाता रहा। जैसे इफिसियस इसकी एक विशेषता थी, स्मुर्ना, पिरगमुन और आगे फिलदेल्फिया, उनमें से हर एक कलीसिया में एक विशेषता थी जो विशेषता आने वाले युग में फिर से दिखाई देती रही। ओह यदि आप केवल कोई भी मनुष्य उस वचनों की आत्मिकता को उपयोग करके इसे देख सकता है और कह सकता है कि वे प्रेरणा से नहीं थे, आपकी वही प्रतिक्रिया, वही उद्देश्य, लोगों के वही मकसद, इससे यह साबित होता है कि वचन प्रेरणा से है, ताकि यह देखे कि परमेश्वर उन बातों को कैसे लागू करता है। बस आप जो यहाँ पर कर रहे हैं यह किसी बात की प्रतिछाया है, जैसे अब्राहम इजाक को भेंट चढ़ाने के लिए ले गया जो उसका इकलौता पुत्र था, ये परमेश्वर के अपने पुत्र को देने की प्रतिछाया थी उस सैकड़ों वर्ष के बाद की, किस तरह से यूसुफ को बेच दिया गया था और वह जेल में था, अपने भाइयों के द्वारा घृणित किया गया था और अपने पिता के द्वारा प्रेम किया गया था, यीशु जो उसका नमूना था। किस तरह से आत्मा ने यूसुफ उस एक मनुष्य के जरिए से काम किया और उसने बस पूरी तरह से मसीह के जीवन के नमूने को दर्शाया। कैसे दाऊद का पुत्र उसी पहाड़ पर बैठा है जब दाऊद को राजा के रूप में ठुकरा दिया गया था और पहाड़ी पर चढ़ गया, जैतून के पहाड़ पर पीछे मुड़कर देखा रोते हुए राजा के रूप में। कुछ 100 वर्षों के बाद दाऊद का पुत्र उसी पहाड़ी पर चढ़ गया एक अस्वीकृत राजा के रूप में और यरूशलेम के ऊपर रोया। आत्मा नमूने और उस रूप में है। ओह, फिर क्या आप इस अंतिम दिन में महान पेंटिकॉस्ट कलीसिया को देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि कैसे पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने इसका शुभारंभ किया? इसी आत्मा को कलीसिया में सारे युगों में से होते हुए बने रहना चाहिए था। वे औपचारिक और बेरुख हो गए, उन्हें एक संप्रदाय होना था, उन्हें कलीसिया और राज्य को एकजुट करना था और उन्होंने आखिरकार ऐसा ही किया और सैकड़ों वर्ष की सतावट का कारण बन गए। तब वे सुधारक वे बाहर आते हैं और हर एक वर्ष वे आत्मा से अलग होते जा रहे थे और स्वाभाविक बातों से जुड़ते जा रहे थे, आत्मा से अलग होते जा रहे थे और स्वाभाविक बातों से जुड़ते जा रहे थे, इतना तक अब भी वे बस फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हम इन अंतिम समापन की घड़ी में रह रहे हैं जो कलीसिया की समाप्ति है। हम फिलाडेल्फिया में हैं, मेरा मतलब लौतकिया कलीसिया युग में है। अब पहला अध्याय पहला पद जिसे योहन्ना को परिचय दिया गया था, अब लेखक कौन है? योहन्ना। यह योहन्ना का एक प्रकाशित वाक्य नहीं था और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य था। वह यह था, वह एक चेला होने के लिए चुना गया था और किताब अपने आप में इस बात का खुलासा करती है कि यह यीशु मसीह था जिसे वह प्रकट कर रहा था और इसे भेजा गया था और योहन्ना को उसके दूत के द्वारा इसे वर्णन किया गया। हम नहीं जानते कि दूत कौन था, बाइबल यह नहीं बताती है कि दूत कौन था, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक भविष्यवक्ता था क्योंकि बाइबल ने बाद में कहा कि मुझ यीशु ने अपने दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे होने वाली बातों के विषय में गवाही दे। तब हम पाते हैं कि जब योहन्ना दूत की आराधना करता है तो दूत ने कहा, देखो कि तुम ऐसा मत करो। प्रकाशित वाक्य 22, मैं सोचता हूँ कि यह उसमें है। और उसने कहा, क्योंकि मैं भविष्यवक्ताओं का और तेरा संगी दास हूँ। यह एलिया हो सकता है, यह भविष्यवक्ताओं में से एक हो सकता है। योहन्ना एक प्रेरित था लेकिन इस भविष्यवक्ता को भेजा गया था और योहन्ना एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसके बाकी की पत्रियों में स्वभाव को देखें, यह साबित करता है कि इसे योहन्ना ने नहीं लिखा था क्योंकि उसमें योहन्ना की तरह का कोई स्वभाव नहीं है। पहले योहन्ना की किताब को लें, दूसरे योहन्ना इत्यादि और इसे पढ़ें और उसके स्वभाव को देखें और इसके स्वभाव को देखें। योहन्ना एक लेखक था और एक प्रेरित था लेकिन यह एक भविष्यवक्ता की आत्मा है। यह पूरी तरह से एक अलग ही व्यक्ति है। देखा, यह योहन्ना लेखक नहीं था, योहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं था, यह तो कलीसिया के लिए यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य था और यह था। योहन्ना तो केवल एक लेखक था, लिखने वाला, और किताब उसी बात को घोषित करती है। अब ये योहन्ना को संबोधित नहीं किया गया था, इसे तो कलीसिया को संबोधित किया गया था। तो ठीक है, उस समय पर योहन्ना एफिसियो कलीसिया का पास्टर था और अब किताब योहन्ना को संबोधित मतलब कलीसिया को संबोधित करती है, ना ही योहन्ना को। अब तीसरा पद वह आशीष की घोषणा करता है, इसे सुनना। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। कौन सा समय निकट है? जिस समय यह बातें घटित होती हैं, जब यह यीशु मसीह का प्रकाशन हर एक कलीसिया युग में पूरा होता है। अब उसका इसके इस तरह लिखने का जो कारण है, यदि उसने कहा होता ठीक है, अब वे उसके लिए देख रहे थे, यदि यह प्रकट हुआ होता था, यदि वो या यदि योना को प्रकट हुआ होगा कि वो आने वाला था, जैसे ही वे कलीसियाएं वहां पर समाप्त हुई थी। इसी तरह से योना ने इसे सोचा, लेकिन यदि ऐसा था तो वे कलीसियाएं जैसे ही वे समाप्त हो गई, वे आकर, यदि वह जानता था, यदि यह उस पर प्रकट किया गया था कि सात लंबे कलीसिया काल होने जा रहे थे, जो कई हजार वर्ष है, मतलब कई सैकड़ों वर्ष, तब प्रतीक्षा का कोई कारण नहीं होगा। वे तो बस अपने कलीसिया के युग को जीते। इसलिए परमेश्वर ने इसे बोला और यह उसके लिए प्रकट नहीं हुआ। यह मार्टिन लूथर को प्रकट नहीं हुआ। वे बातें जिसे जॉन वेस्ली ने वचन के बारे में जानी, यह बैप्टिस्ट को प्रकट नहीं हुआ जो पेंटिकॉस्टल वचन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह एक अलग ही युग में है, यह अलग समय है, और परमेश्वर उसकी बातों को बस ऋतु में प्रकट करता है। ओह, आप दाने को वसंत ऋतु में बोकर और उसी समय पर कटनी नहीं कर सकते हैं। आप एक बीज को बोते हैं और यह परिपक्वता के लिए बढ़ता है। परमेश्वर अपने वचन को बोता है और फिर यह तब बढ़ने लगता है, और तब हम पीछे देखकर और कहते हैं यह वहाँ पर था, क्योंकि निश्चय ही हम इसे प्रकट होने के बाद देखते हैं। अब धन्य है वो वचन, आशीष की घोषणा, तीसरे पद पर, उनके लिए जो उसके रहस्यों को पढ़ते या सुनते हैं। करना, शारीरिक मन इसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि शारीरिक मन इसके बारे में एक भी चीज नहीं जानता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शारीरिक मन इसे नहीं जानता, क्योंकि यह उस शारीरिक मन में शैतान है, और शैतान प्रदर्शित हुआ है, और शैतान खुद को प्रदर्शित नहीं करवाना चाहता है। आप ध्यान देना कि शैतान के लिए यह कितनी भयानक बात है, जब वो सोचता है कि वह प्रदर्शित होने वाला है। उन सभाओं में से एक में देखें, लोगों की प्रतिक्रिया को देखें। आप सभाओं में देख लेना, शैतान के प्रदर्शित होने से ठीक पहले किसी एक व्यक्ति पर आप देखेंगे उसका चेहरा बदल रहा होता है। आप देखना, वे नहीं जानते कि क्या सोचें। उसी वक्त पवित्र आत्मा नीचे उतर आता है और उस शैतान को प्रदर्शित करता है। ओह, वह इस प्रकार की सभा से घृणा करता है। यही वो कारण है कि हमारे पास इस तरह की लड़ाई थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान को प्रदर्शित करता है। समझे, यह बताता है कि वो क्या है। जैसा कि आप कहते हैं, वो स्त्री वहाँ पर बैठी हुई है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नीचे, कहते हैं उसका नाम कुमारी जॉन्स है, वह फलाना और फलाना से आई है। वह क्या करता है, वह उसकी आत्मा को लेता है, उसे एक स्थान पर लाता है। आप मुझे कैसे जानते हैं, वह मनुष्य मुझे नहीं जानता है, इसलिए यह कोई तो आत्मा होना चाहिए। यह किस तरह का आत्मा है, यह परमेश्वर का आत्मा है। कैसे, मेरे साथ क्या बात है, आपको शरण रोग, कैंसर है, या जो कुछ भी हो, लेकिन यहोवा यो कहता है, ओह ओह, शैतान किस तरह से घृणा करता है, क्योंकि यह उसे बेनकाब करता है। अब शारीरिक मन देखता रहता है, कहता है यह मनो को पढ़ने वाला है, मनोवैज्ञानिक है। वे नहीं जानते, यह उनके लिए मूर्खता है, लेकिन उनके लिए जो जानते हैं कि यह क्या है, ओह क्या ही आशीष है। यह क्या है, एक प्रकाशन है। किसका एक प्रकाशन? पुलपिट पर उस एक मनुष्य का, यीशु मसीह का, जो इस अंतिम कलीसिया युग में है, खुद को प्रकट करते हुए, जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो करेगा। समझे, यह एक प्रकाशन है, देखो। और शैतान उससे घृणा करता है। ओह, वह इससे किस तरह से घृणा करता है, वह बेनकाब हुआ है, उसकी योजना को उजागर करता है। शैतान प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति की किताब से घृणा करता है। मैंने यह लिख कर रखा है, यह बिल्कुल सच है। अब वह एक प्रकाशित वाक्य से क्यों घृणा करता है, वह प्रकाशित वाक्य के विरोध में क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन का संपूर्ण सिद्धांत और परमेश्वर की कलीसिया पूरी तरह से प्रकाशन पर बनाई गई है। यह कभी भी एक स्कूल के जरिए से नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितने भी अच्छे धर्म विद्यालय हों, वे बहुत पीछे अंधकार में युग में हैं। बाइबल और कलीसिया पूर्ण रूप से एक प्रकाशन है। आइए हम खोलेंगे, मैंने यहाँ कुछ वचन लिख कर रखे हैं, मती 16 अध्याय और 18 पद। आइए हम थोड़ा मती 16 18 पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि वचन कहाँ पर है, यह प्रकाशन कहाँ पर है, जो उस पहाड़ी से आ रहा है। 17 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अब कैथोलिक कलीसिया कहती है उसने इसे पतरस पर बनाया। ठीक है, यह वास्तव में बहुत ही शारीरिक सोच है। आप एक आत्मिक मन के लिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह की समझ को रखेगा। परमेश्वर के रूप में अपने खुद के पुत्र के साथ वहाँ खड़ा हुआ है और फिर भी एक सामान्य साधारण पाप से जन्मे मनुष्य पर अपनी कलीसिया को बांधेगा। मनुष्य ने इसे साबित कर दिया। वह उस पर उसी आत्मा के साथ उसने यीशु को शाप दिया और उसे ठीक उसके सामने इनकार कर दिया। यह पतरस नहीं था या ना तो वह एक चट्टान था जो वहाँ पड़ी थी, जैसा कि कुछ कलीसियाओं का दावा है कि वो था। एक चट्टान नहीं था, क्योंकि पतरस वह जिस चट्टान के बारे में बोल रहा था वह पतरस नहीं था, न ही वह स्वयं था। अब प्रोटेस्टेंट लोगों में से बहुत से कहने की कोशिश करते हैं यह यीशु था, यह तो वो था जिस पर उसने कलीसिया को बनाया। वो नहीं, यह फिर भी गलत है। यदि आप ध्यान दें, यह यीशु नहीं था, ना तो यह पतरस था, यह प्रकाशन था। मांस और लहू ने तुझे इसे प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह प्रकाशन को दिया है। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अदन के बगीचे में वहाँ कोई वचन नहीं लिखा था, और फिर वे दो लड़के केन और हाबिल, और वे दोनों एक बलिदान को करना चाहते थे और परमेश्वर के द्वारा पक्ष को पाना चाहते थे। जब उन्होंने वैसा ही किया, केन ने आकर और एक वेदी बनाई, हाबिल ने एक वेदी बनाई, तो ठीक है, यदि यही सब परमेश्वर की आवश्यकता है तो परमेश्वर केन को दोषी ठहराने के लिए अन्यायी होगा। तो ठीक है, तब केन ने एक बलिदान किया, वैसे ही हाबिल ने किया, दोनों ने एक बलिदान किया, केन ने आराधना की और हाबिल ने भी वैसा ही किया। केन ने वह सब कुछ किया जो हाबिल ने किया था। सो यदि कलीसिया में जाना, कलीसिया से संबंध रखना, बलिदान को तैयार करना और प्रार्थना करना और परमेश्वर की आराधना करना, ये सब परमेश्वर की आवश्यकता है, तब परमेश्वर ने केन को वास्तव में यही करने के लिए दोषी ठहराने के लिए अन्यायी होगा जो उसने करने को कहा था। लेकिन आप देखें, हाबिल एक प्रकाशन के द्वारा वह जानता था कि वो फल नहीं था जिसे उस अदन के बगीचे में लाया गया था, जैसा कि आज बहुत से शारीरिक मन वाले सोचते हैं। हाबिल ने आकर और भूमि के फल को चढ़ाया और परमेश्वर ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह प्रकट किया गया था। मेरा मतलब है, केन ने ऐसा किया, मुझे क्षमा करें, केन ने भूमि के फल को भेंट चढ़ाया क्योंकि उसने सोचा कि अदन के बगीचे से उन्हें बाहर लाया गया है। प्रकाशन को देखना, इससे असहमति को देखना, देखो किस तरह से आज ठेस पहुंचाता है, लेकिन यह फल नहीं था जो उन्हें बाहर ले आया। हवा ने कभी सेब नहीं खाया था, निश्चय ही सेब खाने पर उसे नग्न होने का एहसास कैसे हुआ? यह तो यौन जीवन से संबंधित बात है, होना था। अब हम इसे एक अध्ययन के रूप में लेते हैं और हमें इसमें वापस जाना है। उनके पास इस पर एक वचन भी नहीं है। उसमें से कुछ कहते हैं, तो ठीक है, उसने कहा मुझे प्रभु से एक पुत्र मिला है। जी हाँ श्रीमान, वैसा ही वैश्य को मिला है। परमेश्वर को ही सारा जीवन बनाना है, लेकिन यह एक दूषित जीवन है। उस लड़के के स्वभाव को देखो, वह अपने पिता शैतान का था, घृणा रखने वाला, गंदा, हत्यारा, देखा। और फिर कैसे हाबिल, जब वे उसके माता पिता ने शायद उसे बताया कि पेड़ पर फल लगा था और इत्यादि, लेकिन ये हाबिल को प्रकट हुआ था। हाबिल जाकर और एक मेमना ले आया लहू के लिए, जीवन को लेते हुए, न ही एक फलदार पेड़, सेब और केले और नाशपति को लाते हुए, लेकिन हाबिल एक आत्मिक प्रकाशन के द्वारा इब्रानियों 11 परमेश्वर के लिए एक और अधिक उत्तम बलिदान को चढ़ाया। परमेश्वर इसकी गवाही देता है क्योंकि यह विश्वास के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। यही है जहाँ परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांधता है, क्योंकि मांस और लहू के द्वारा यह कभी प्रकट नहीं हुआ। इसे एक धर्म विद्यालय में कभी नहीं सिखाया गया, किसी ने कहीं भी आपको यह नहीं सिखाया, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इसे तुम पर प्रकट किया है। वहाँ सारी बात प्रकाशन पर है, संपूर्ण कलीसिया यीशु मसीह के प्रकाशन की इस चट्टान पर मैं इस कलीसिया को बांधूंगा। आप हो सकता है जो पास्टर कहता है उसे ले सकते हैं, धर्म विद्यालय जो सिखाता है उसे ले सकते हैं, आप कलीसिया जो कहती है उसे ले सकते हैं, और यह अब भी सही नहीं है। आप इसे उत्तम बोली से समझाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर आपको यह प्रकट नहीं करता कि यीशु मसीह उसका पुत्र है और आप उसके लहू के जरिए से बचाए गए हैं, उस प्रकाशन पर कि वह मेरा उद्धार करता है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अदलों के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। सो तब आप देखते हैं कि शैतान प्रकाशन की किताब से इतना विरोध में क्यों है। जो कुछ भी प्रकट हुआ है आत्मिक प्रकाशन, शैतान इसके विरोध में है, इसलिए वह आज सेवकाई के विरोध में है। इसलिए यह क्या है? मसीह का प्रकट होना। कलीसिया को इसके बड़े संप्रदायों और संगठनों और उसके छोटे फूलों वाले संदेशों और इत्यादि के साथ आगे बढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। शैतान उससे परेशान नहीं होता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हर कोई उनकी पीठ पर थपथपाता है। जब एक समय आता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से मसीह को कलीसिया में वापस प्रकट करता है, सामर्थ और प्रमाण के साथ, बीमारों को चंगा करते हुए और चिन्हों को देते हुए, जिसे उसने कहा कि विश्वासियों के पीछे पीछे जाएंगे, वे पूरे होंगे। उसके बाद शैतान अपने बिस्तर पर से उठ जाता है, वह इसके विषय में कुछ तो करने लगता है। उस समय तक शैतान परवाह नहीं करता है कि आप कितने कलीसिया से जुड़ते हो, वह परवाह नहीं करता कि कितने ही। लेकिन जब मसीह आपको यह प्रकट करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और जो कार्य उसने किए वह तुम भी करोगे, न ही कुछ और कामों को लेकिन उसी काम को करोगे। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, संत यूहन्ना 14:7, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, उन्हीं कामों को करेगा और इससे बढ़कर करेगा। क्योंकि मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार नहीं कर सकता जो बढ़कर काम होगा, वह इसे उनके पास नहीं ला सकता था क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था। लेकिन जब यीशु ने आकर और उसके जीवन को बलिदान किया और पवित्र आत्मा वापस आया, तो वे लोगों के लिए अनंत जीवन को प्रदान कर सकते हैं। यही वो बढ़कर काम है। लेकिन चिन्ह और अद्भुत काम यीशु ने स्पष्ट रूप से मरकुस 16 में कहा, तुम सारे संसार में जाकर और हरेक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। कितना दूर तक? सारे संसार को, कितनों को? हरेक सृष्टि को। जब तक उस सुसमाचार का प्रचार होते जा रहा है, यह चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। और जब यह एक प्रकाशन बन जाता है भाई, तब तुम उस राज्य के पास होते हो। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में जय नहीं पा सकते, क्योंकि वो पुरुष या स्त्री जो वहाँ पीछे किसी समय अकेले उस रेगिस्तान में रहे हों, जैसे मूसा था, और परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा के जरिए से उसके सामने प्रकट किया जाता है, वहाँ उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। वह उतना ही दृढ़ और मजबूत होता है जितना वो हो सकता है। शैतान प्रकाशन से घृणा करता है, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है जो उसकी योजनाओं को चौपट कर देता है। किताब की प्रकृति बताती है कि यूहन्ना ने इसे नहीं लिखा था। ये सही बात है, क्योंकि वे उसकी लिखी हुई है, लेकिन उसकी प्रेरणा नहीं है। यह परमेश्वर की प्रेरणा है जो किताब को लिखती है। तो ठीक है, आइए देखें कि अब क्या कहती है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। अब समय नजदीक है क्या? जब यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन उसके कलीसियाओं के लिए ज्ञात करवाया जा चुका है, और जैसे जैसे युग निकलते जा रहे हैं, ये बस वैसे वैसे उन्हें प्रकट होता है। अब हम ठीक अंत समय पर हैं, इसलिए अब हम वास्तव में संसार के अंत में हैं। हम संसार के इतिहास की समाप्ति पर हैं, और इससे पहले ये सप्ताह खत्म हो और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता करते हुए हम साबित करेंगे कि हम कलीसिया के युगों की समाप्ति पर हैं। हम फिले या लौदिकिया कलीसिया युग में हैं, जो सारे युगों की समाप्ति है। हम राजनीतिक संसार के समाप्ति पर हैं, हम स्वाभाविक संसार की समाप्ति पर हैं, हम सारी चीजों की समाप्ति पर हैं, हम हर एक स्वाभाविक चीज के अंत में हैं, प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। एक दिन आते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं शिवरीपोर्ट जा रहा था या कहीं से आ रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा, पेड़ मर रहे हैं, घास फूस मर रहे हैं, फूल मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, संसार मर रहा है, हर एक चीज मर रही है, इस संसार में की सारी चीजें मर रही हैं। हम आज सुबह यहाँ पर बैठे हुए हैं, मर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं तो एक ऐसा संसार है जहाँ सब कुछ नहीं मरता। यदि वहाँ एक है जहाँ सब कुछ मर रहा है, वहाँ पर एक होना है जहाँ सब कुछ जीवित रहता है। यही है जिसके लिए हम तीव्र इच्छा रखते हैं, उस स्थान पर जाने के लिए जहाँ अविनाशी पेड़ खड़ा रहता है, ओह, जहाँ सब कुछ अमरहार है और यह परमेश्वर की महिमा में खड़ा रहता है। अब पहले तीन पद हमने अभी लिए थे जो बुनियाद को डालते हैं। पहला, यीशु मसीह का प्रकाशन। दूसरा, यह एक दूत के द्वारा यूहन्ना को दिया गया था। और तीसरा है धन्य है वे जो पढ़ते हैं उनके लिए आशीष है, और यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं धन्य है वह जो सुनता है। आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप बस इसे सुन लीजिए, बस ऐसा ही है। धन्य है वह जो पढ़ता है, और यदि तुम नहीं पढ़ सकते धन्य है वह जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है। अब कल्पना कीजिए कि इसके सिद्धांत का क्या मतलब है। यूहन्ना जो वहाँ लेखक था जिसने इसे लिखा ऐसा था, यह यहाँ यूहन्ना है जो बस आशीषों और इत्यादि को कह रहा है। अब मुझे जो लगता है कि यह ऐसा था, पुराने नियम में याजक एक सुबह खड़े होकर और वचनों को पढ़ता है, सभा के लोग सुनते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसने कहा धन्य है वो जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, समझे, पढ़ने वाला और सुनने वाला, वो एक जो पढ़ता है और सुनता है वह धन्य है। सो यदि आप बस इसे बैठकर और इसे सुनते हैं तो आप धन्य हैं। धन्य है वह जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है। अब 4 से 6 कलीसिया के लिए एक अभिवादन है। अब हम इस 4 और 6 पद को लेना चाहते हैं। अब इससे पहले कि हम इस पर जाएं, मैं सोचता हूं कि हर एक जन अब गहराई से सोचने की कोशिश करे। अब ये क्या है? यह यीशु मसीह का प्रकाशन है जहां परमेश्वर ने समय पर से पर्दा उठाया था। यहां वो समय है जो यीशु नहीं देख सका जब वो यहां पृथ्वी पर था, कलीसिया युगों में, कि क्या बात जगह लेगी। सो परमेश्वर ने पर्दे को निकाल दिया, उसे पीछे की ओर खींचा और यूहन्ना को अंदर जाने दिया और दिखाया कि हर एक युग में क्या करने जा रहा था, और इसे एक किताब में लिखा और इसे 7 कलीसियाओं के लिए भेज दिया। यह क्या है? मसीह उसके कार्य करने के दिनों में प्रकट हुआ। यह कार्य से भरी हुई किताब है और यह एक भविष्यवाणी की किताब है जिसे मसीह देता है। परमेश्वर ने हमें अपने दूत के द्वारा दिया है जिसे योना ने लिखा है, और ये हर किसी के लिए एक आशीष है जो इसे पढ़ेगा या पढ़ते हुए सुनेगा, क्योंकि समय नजदीक है जब यह सब पूरा होता है। अब एक अच्छी तैयारी है, और याद रखें हम कलीसिया को मन में रख रहे हैं। एक तरफ कलीसिया का आरंभ हुआ, दूसरी ओर कलीसिया समाप्त होती है। इससे भी अधिक बताएंगे सोमवार की रात को जब हम कलीसिया के युगों को लेंगे। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। अब हम रहस्यों और चिन्हों के गहरे भागों में आ रहे हैं। ये उन कलीसियाओं को संबोधित करता है जो आसिया माइनर छोटे भाग में है। उसके पास वे युग उस समय पर जो भविष्य में आने वाले थे, और उसने उन्हें ऊपर उठाया और उनके काम के लिए प्रशंसा की और जो उन्होंने किया था। लेकिन अब यह उन कलीसिया को संबोधित करता है, वे 7 कलीसियाएं जो आसिया माइनर छोटे भाग में है। अब आसिया माइनर छोटे भाग में नहीं, पूरा आसिया, आसिया का महाद्वीप, ये बस छोटा सा भाग था। वे दावा करते हैं कि एक स्थान जो लगभग पेंसिल्वेनिया राज्य के आकार का है, देखो, या ऐसा ही कुछ, या इंडियाना, बस एक छोटा सा स्थान जहां ये 7 कलीसिया स्थापित है। वहां उस समय पर उन कलीसियाओं से और भी अधिक थी, और लेकिन इसने उनके चरित्र को प्रकट किया। अब मैं यहां वही पढ़ रहा हूं जो मैंने इसके इतिहास से पढ़ा है, और वह शापित है वह जो सुनता है या इसे ध्यान नहीं देता। और अब यह इस समय 4 पद में नीचे आता है जिसे हम यहाँ कुछ समझाना चाहते हैं, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। अब ये आत्माएं हम उन्हें बाद में ले लेंगे। अब यहाँ यह व्यक्त करता है, यदि आप इसमें ध्यान देंगे, 7वें पद में और 8वें पद में वह फिर से आता है और कहता है, फिर से व्यक्त करता है। अब देखना, अब 7 कलीसियाओं को संबोधित किया गया है, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। जो था एक समय, अब है और जो आने वाला है। अब वह यहाँ उसके 3 प्रकार के उसके काम के उसके 3 प्रकार के प्रकटीकरण को व्यक्त करता है। अब यदि आप आठवां वचन लेंगे, हम बस एक मिनट में इस पर आएंगे, हम आठवां वचन लेंगे। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। प्रभु यह कहता है, वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। अब हम चौथे और छठवें पद को पकड़े हुए हैं, जांचते हैं, वे दोनों एक ही हैं। एक वो कहता है, एक वो जो था, जो है, जो आने वाला है। वह कलीसिया के सामने क्या रखने की कोशिश कर रहा है? उसकी दैविकता को। आज लोग उसे एक भविष्यवक्ता बनाने की कोशिश करते हैं। वह एक भविष्यवक्ता से बढ़कर है, और कुछ लोग उसे तीन परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। वह तीन परमेश्वर नहीं है, वह एक परमेश्वर है जो तीन कार्य स्थानों में रहता है। एक ही परमेश्वर के तीन प्रकटीकरण है। अब याद रखें, यह प्रकाशन है, और जो कोई भी इसे सुनता है और इस किताब की कही हुई बातों को बनाए नहीं रखता है, उसका भाग जीवन की किताब से लिया जाएगा। यीशु अपने आप को तीन परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन एक ही परमेश्वर और तीन कार्य स्थान है। ओह, यह थोड़ी देर बाद गहरा होने जा रहा है, जब हम उन कलीसिया युगों में जाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने कहाँ खो दिया। इसने निसियन परिषद में एक बड़े अलगाव को लाया। वे दोनों ही गहरे छोड़ पर निकल कर चले गए, और उन्होंने अंतिम दिनों में फिर से इसी तरह का काम किया, ठीक उसी तरह जैसे एक पूर्व निसियन परिषद फिर से, क्योंकि वहाँ पर एक और को होना है। बस ये उतना ही निश्चित है जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया एक साथ किसी बात पर तो एकजुट होंगे या एक दूसरे से सहमत होंगे। अब वहाँ कैटरबरी के मुख्य बिशप को देखें। ये सब ठीक एक साथ इकट्ठा हो रहा है, और बाइबल में न ही एक त्रिगुरुआत्मक परमेश्वर की शिक्षा है, वहाँ एक परमेश्वर है। और यह प्रकाशित वाक्य की किताब में यहाँ प्रकट होता है, जो वचनों का संपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर साबित हो सकता है, और मसीह ने उस पर अपनी मोहर लगाई। यही वो बात है, यदि कोई इसमें से निकालता है या इसमें जोड़ता है, तो उसी तरह उसे उसके लिए जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसकी ओर बढ़ना है, न ही स्वार्थी ढंग से इसकी ओर बढ़ना है, एक खुले हुए हृदय से और एक खुले हुए मन के साथ। अब निसियन परिषद पर वे दो बड़े निर्णय पर आते हैं, पर ओह, उस दिन पर उनमें से बहुतों के पास, जो प्रारंभ की कलीसिया के पूर्वज थे, उनके पास दो किनारे के दृष्टिकोण थे। उनमें से एक दृष्टिकोण त्रिएकता परमेश्वर का था, जो एक क्रियात्मक है, और दूसरा एक था जो एक परमेश्वर का है, और वे दोनों अस्तित्व में आकर और वे सीधे अलग अलग निकल गए इस तरह से बाहर। त्रिएकता एक तीन परमेश्वर के व्यक्ति का स्थान बन गया। एकत्व जो एक इकाई बन गई, बिल्कुल उतना ही गलत जितना कि दूसरा गलत था। तो वे दोनों अलग अलग निकल गए, लेकिन ठीक यहाँ पर सत्य प्रकट होता है। यीशु अपना स्वयं का पिता नहीं हो सकता था, न ही यदि उसके पास पवित्र आत्मा के अलावा एक पिता है तो वह एक नाजायज बालक है। और नहीं, पवित्र आत्मा ने उसका गर्भ धारण किया और उसने कहा कि परमेश्वर उसका पिता था। तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर, यह मती 1:18 है, यदि पवित्र आत्मा और परमेश्वर को एक ही व्यक्ति होना है, या तो उसके दो पिता हैं। और उसे इमैनुअल कहा गया था, जो कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने दावा किया जब वह धरती पर था कि वो और पिता एक थे। मैंने यहाँ सारे वचनों को लिख कर रखा है ताकि आप देख सके क्या हमारे पास यह प्रश्न या कुछ तो था। अब जब वह यहाँ प्रकटीकरण में आया था, उसके अस्तित्व में होने के तीन प्रकार के कार्य स्थान के रूप में, वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। अब वहाँ कोई तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। और निसियन परिषद में ऐसा करने के लिए, उन्हें ऐसा करने के लिए एक त्रिएकता को लेना था, क्योंकि रोमन संसार में उनके कई देवता थे। उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों की प्रार्थना की। मेरे पास ठीक यहाँ पर इतिहास है जहाँ हम इसका हवाला दे सकते हैं, समझे? उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों की प्रार्थना की। यही वो कारण है कि उनके पास संत चेस्लिया और संत मार्कस और संत 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 हैं। जब प्रेरित पत्रस ने कहा परमेश्वर और मनुष्य के बीच उस मनुष्य यीशु मसीह के अलावा कोई और बिचवाई नहीं है, वो ही एक है। उनके पास एक क्रियात्मक परमेश्वर होना था, तो उनके पास जुपिटर, मार्स, वीनस थे और यह सही नहीं था। यह सबको एक परमेश्वर पर डाल देते हैं, तो उन्होंने बस इसे अलग कर दिया और परमेश्वर के तीन प्रकार के तीन अलग अलग कार्य स्थान बना दिए। लेकिन यह प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट रूप से यहाँ कहता है वो कौन है। मैं वो हूँ, वो जो था, वो है और वो जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। हम इसे यहाँ थोड़ी देर बाद लेंगे। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ए टू जेड, संपूर्ण यूनानी वर्णमाला। शोषण की घाटी का फूल, शरण का गुलाब, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो जो था, जो है और आने वाला है, दाऊद का वंश और संतान, वह परमेश्वर है, परमेश्वर। साथ ही सबसे पहले तिमुथियुस 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, परमेश्वर। न ही कोई तीसरा व्यक्ति या भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। अब यह एक प्रकाशन है, याद रखें। अब परमेश्वर आदि में महान यहोवा था, जो अग्नि के एक स्तंभ में रहता था, इज़राइल के ऊपर मंडरा रहा था और उनकी अगुवाई की, जो परमेश्वर था, वाचा का दूत, पहाड़ पर उतर आया, सारे पहाड़ ने आग पकड़ ली, अग्नि पहाड़ पर से ऊपर उठने लगी और 10 आज्ञाओं को लिखा। उसे परमेश्वर का प्रतित्व कहा गया था, उसके बच्चों के लिए, उसके लोगों की चुनी हुई जाति, वे यहूदी। फिर वही परमेश्वर एक कुंवारी से जन्मा, देह में प्रकट हुआ, जो देह उसने मरियम के गर्भ में बनाई गई थी, और रहा था और डेरा किया और उसके तंबू को तान दिया, जैसा वह था मनुष्य जाति के बीच में रहा, और वही परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे बीच में वास किया, बाइबल ऐसा कहता है। परमेश्वर मसीह में था, वो शरीर यीशु था, यीशु उसमें परमेश्वर की देह की परिपूर्णता वास करती थी। अब उसे तीन व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। तीन परमेश्वरों के लिए बपतिस्मा मत दो, एक ही परमेश्वर है, देखा, एक परमेश्वर। अब ये वही परमेश्वर देहधारी हुआ था, उसने कहा मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। उसके धरती पर से विलुप्त हो जाने के बाद उसकी मृत्यु होने पर दफनाना और पुनरुत्थान और उठाया जाना, फिर पौलुस वहाँ उसे दशमिश के रास्ते पर मिला, जब उसे उस वक्त शाउल कहा जाता था, और एक आवाज आई और कहा शाउल शाउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा तुम कौन हो। उसने कहा मैं यीशु हूँ, और वह अग्नि का एक स्तंभ था, एक प्रकाश जो प्रेरित की आंखों को अंधा कर दिया था, वह मुड़ गया था, वही यीशु वापस परमेश्वर पिता हो गया था। यही वो कारण है कि उसने यहाँ कहा मैं वो सर्वशक्तिमान हूँ, उसी रूप में जो उससे पहले वो था, वह देहधारी हुआ था, और उसका शरीर जिसमें वो रहा वह यीशु कहलाया गया था, वह मनुष्य जिसे हम जानते हैं यीशु। अब जैसे आप में से वननेस वाले बहुत सारे प्रिय लोग जिनका यीशु के नाम बपतिस्मा हुआ है, आप गलत हैं। आज संसार में सैकड़ों यीशु हैं, लेकिन केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह है, वह एक मसीह जन्मा था। बहुत सारे यीशु हैं, मैं उनमें से कई से मिल चुका हूँ, लेकिन एक ही प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, वे शीर्षक है जो एक नाम पर जाते हैं, वे बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता एक नाम नहीं है और पुत्र एक नाम नहीं है और पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है, यह एक शीर्षक है, जैसे मनुष्य का, यह वही है जो पवित्र आत्मा है, एक मनुष्य या एक आत्मा, पवित्र आत्मा। तब कहते हैं पिता के नाम में पिताओं की ओर देखो और तुम्हारे पुत्रों को, पुत्रों यहाँ के मनुष्य को देखो, देखा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह एक नाम नहीं है, यह एक शीर्षक है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जाता है। इसी तरीके से आरंभ में प्रेरितों की कलीसिया ने बपतिस्मा लिया, और मैं किसी से भी पूछूंगा वचन में से एक भी लेख दिखाए या इतिहास में का एक भी समय कि किसी व्यक्ति को भी मसीह कलीसिया में किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा दिया गया था यीशु मसीह के नाम के अलावा, जब तक कैथोलिक कलीसिया नहीं बनी और उन्होंने एक संप्रदाय के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अपना लिया। अब अपने किसी इतिहास को सामने लाएं, इतिहासकारों, जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 304 AD के बाद, 304 एक त्रिएकता परमेश्वर के लिए त्रिएकता बपतिस्मा आता है। परमेश्वर वो पिता, परमेश्वर वो पुत्र, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा, यह पागानवाद है। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं इसे किताबों से पढ़ूंगा और आपको बाइबल से दिखाऊंगा। हम आज सुबह प्रकाशन पर बात कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि यह कहां से आया है और यह कैसे सामने आने लगा। सच्चाई पर वापस आए भाई, हम अंतिम दिन में हैं। आप रुके रहना जब तक हम इफिसियों कलीसिया के विषय में नहीं जाते हैं और इसे लोदकिया के साथ जोड़ दें और देखें कि उनके बीच क्या हुआ था। आप देखेंगे कि वो चीज धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। लूथर के युग में आया, कहा तुम्हें एक नाम मिला है जिसमें तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो। उसी शब्द सर्दिस का अर्थ है मरा हुआ। उन्होंने इसे 1500 वर्ष के अंधकार युग में खो दिया। उनमें से हरेक कलीसिया ने उस समय तक इसे बनाए रखा। उसके बाद जब उनके पास 606 में निसिया परिषद थी और तब उन्होंने उस नाम को ध्वस्त कर दिया और उनमें से 3 परमेश्वर को बनाया। उसने यहाँ पर कहा, मैं वो हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। निश्चय ही वो धरती पर 3 प्रकार के अस्तित्व में था। जब वो धरती पर था तो वह धरती पर 3 प्रकार का अस्तित्व था। वह एक नबी था, वह स्वर्ग में भी था, एक याजक, और जब वह फिर से धरती पर वापस आएगा तो वह एक राजा होगा, नबी, याजक और राजा। वो जो था, जो है और आने वाला है, वो जो था यीशु था, एक भविष्यवक्ता, वो जो अब है एक याजक है, आत्मिक बलिदान को कर रहा है, एक महायाजक जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है और खुद को प्रकट और साबित कर सकता है कि वह हमारे बीच में है, नबी, याजक और राजा, लेकिन एक परमेश्वर। जब वह धरती पर था वो एक नबी था, वो वचन, विश्वास योग्य गवाह। बाइबल उसे कुछ देर बाद कहता है एक विश्वास योग्य गवाह, वो नबी है। वो याजक था और जब वो अब याजक है और जब वह आता है तो वो राजा होगा। यदि आप वहां जाकर प्रकाशित वाक्य 15:3 को पढ़ें और प्रकाशित वाक्य 15:3 में देख सकते हैं। आइए यहां पर जाएंगे और देखेंगे कि यह वह क्या वह राजा होने जा रहा है, क्या वह राजा है जब वह आएगा। अब हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और 3 पद में जा रहे हैं। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। वह धरती पर क्या था? नबी। लोगों ने कैसे जाना कि वह एक नबी था? उसने मसीहा के चिन्ह को किया जो एक नबी था। ओह प्रभु का नाम धन्य हो, वे उससे कैसे चूक गए, क्योंकि वे किसी और चीज के लिए देख रहे थे और उसने मसीहा के चिन्ह किए और उन्होंने इसकी नहीं सुना। वह एक नबी था। मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। वो धरती पर नबी था। अब इसलिए वह क्या था? परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य गवाह। आमीन। वह प्रकटीकरण में आया हुआ परमेश्वर का वचन था। संत योहन्ना 1 अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास। वह परमेश्वर के अनंत वचन का सच्चा और विश्वास योग्य गवाह था। वो वचन था, परमेश्वर का वचन था, और वचन होने के नाते वह एक नबी था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें से होकर बहा था। उसे केवल यही बात को कहना था, मैं खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो पिता मुझे करने के लिए दिखाता है, यह मैं नहीं जो काम को करता है, लेकिन पिता जो मुझ में रहता है वो काम को करता है। मैं और मेरा पिता एक है, मेरा पिता मुझ में है, यीशु ने कहा। वो मनुष्य, वो भवन। परमेश्वर के पास बहुत से शीर्षक हैं, यहोवा, यहोवा यिरे, राफा, मनश्शे, ओह बहुत से उसके साथ मिश्रित छुटकारे के नाम है। उसके बहुत से शीर्षक हैं, चारों का गुलाब, सोसन का फूल, भोर का तारा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सारे, लेकिन उसका एक मानव जाति का नाम है। परमेश्वर का केवल एक ही नाम था और वो था प्रभु यीशु मसीह। जब वह जन्मा था, मसीह, प्रभु, 8 दिन बाद पवित्र आत्मा ने उसका नाम यीशु कहकर बुलाया। उसकी माँ ने उसका खतना किया था और उसे यीशु कहकर बुलाया। वह मसीह जन्मा था, जैसे मेरा एक ब्रणम जन्म हुआ था। जब मैं जन्मा था तब मैं एक ब्रणम था और विलियम नाम को दिया गया। आमीन। और वह मसीह जन्मा था, वो उद्धार करता, और जब वह 8 दिन का था तो उसे यीशु का नाम दिया गया और वह महिमा का परमेश्वर था जो प्रकट बना। सो वह प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु की महिमा जो हमारे बीच प्रकट बनी। ओह वहाँ वो है, धरती पर वो नबी था, महिमा में वह याजक है, आगमन में वह राजा है। ओह मुझे ये पसंद है, नबी वचन का विश्वास योग्य गवाह, याजक परमेश्वर के सामने अपने स्वयं के लहू के साथ, राजा संतों का राजा, ना ही संसार का राजा, अब वो संतों का राजा है। हमारे पास उन लोगों के ऊपर धरती के राजा है, लेकिन हमारे पास भी एक राजा है और एक राज्य है। यही कारण है कि हम अलग व्यवहार को करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ज्यादा समय नहीं हुआ मेरी पत्नी के बारे में, हम यहाँ स्टोर पर जा रहे थे और हमने लगभग एक चमत्कार को देखा। यह गर्मियों का समय था, एक स्त्री एक पोशाक पहनी हुई थी और मैंने कहा यह एक अजीब सी बात है। मैंने कहा यदि मेरे पास मेरा कैमरा होता था तो मैं स्त्री की तस्वीर लेता। देखा, क्योंकि हम वो पहली स्त्री थी जिसे हमने स्कर्ट पहने हुए देखा था। आप जानते हैं, एक स्त्री की तरह कपड़े पहने हुए थी जो सभी स्त्रियों के कपड़े होने चाहिए। उसने कहा ठीक है, ऐसा क्यों है बिल कि हमारे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या हमें यह आज्ञा दी गई है? मैंने कहा यह हमारे लोग नहीं है, यह परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को पवित्रता की आवश्यकता है। कहा तो ठीक है, क्या वे कलीसिया नहीं जाते हैं? मैंने कहा ठीक, वहाँ एक महिला है जो यहाँ एक कोई तो कलीसिया में गीत गाने वालों के समूह में गाती है। अच्छा, फिर ऐसा क्यों है? मैंने कहा क्योंकि उसे कुछ अलग नहीं सिखाया जाता है। यह बिल्कुल सही है, यही वो शारीरिक कलीसिया है। हम इस सप्ताह इसमें जाएंगे, आत्मिक कलीसिया, शारीरिक कलीसिया, वे सभी सीधे वापस माता कलीसिया में लौट रहे हैं, जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 17 में कहा गया है। वे ऐसा करेंगे, वे ठीक अभी वापस लौट रहे हैं, वे सारे जैसे वे इस कार्य को कर रहे हैं, वे संस्थागत होते जा रहे हैं। ठीक है, हम एक फलाना है, हम संस्थागत है, हम ये है और हम वो है, ऐसा आरंभ में तो नहीं था। कलीसिया से सारी सामर्थ को निकालते हुए उसे एक बिशप या पोप पर रख रहे हैं। परमेश्वर उसकी कलीसिया में है, उसके लोगों के बीच खुद को प्रकट कर रहा है, जन साधारण और हर किसी में से होते हुए। अब लेकिन इस दिन में उसने कहा ठीक है, हम अमेरिकी नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, हम यहाँ रहते हैं लेकिन हम अमेरिकी नहीं हैं, हम मसीही हैं। हमारा राज्य ऊपर का है और यदि हमारा जीवन ऊपर से आता है तो हम इसी तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि हम आते हैं, हमारा जीवन एक पवित्र स्थान से है। यह अलग ही दिखता है, यह अलग कपड़े पहनता है, महिलाओं के सिर पर लंबे बाल होते हैं और वे अपने चेहरे पर प्रसाधन को नहीं लगाती हैं और वे छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं। वे स्कर्ट और लंबे वस्त्र और कपड़े पहनती हैं और उनके लंबे बाल और इत्यादि होते हैं। तो ये इसका स्वभाव है जो वहाँ ऊपर से है, वहाँ से हम पर प्रतिबिंब होता है। वे मनुष्य धूम्रपान नहीं करते, न ही तंबाकू चबाते, न झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं। उनकी आत्माएं आती हैं, एक पवित्र स्थान से आती हैं, उन्हें पवित्र कार्य करने को लगाती हैं, एक दूसरे को भाइयों के रूप में पहचान करवाते हैं। आहा, ऐसा ही है, हम एक राज्य से हैं और हमारे पास एक राजा है और वह संतों का राजा है, और संत शब्द वे पवित्र जन शब्द से आया है। तब जब एक व्यक्ति को पवित्र किया जाता है, मसीह वो पवित्र आत्मा हृदय में चला जाता है और उनके ऊपर राजा बनता है। ओह प्रभु, यह हृदय में जाना चाहिए। ओह जब परमेश्वर का पवित्र पात्र मसीह वो राजा पवित्र आत्मा अंदर जाता है और वह एक राजा के पास उसका अधिकार होता है, आमीन, और उसका सारा अस्तित्व संतों के राजा के द्वारा राज्य करता है। एक राज्य धरती पर के हर एक राज्य को हिला दिया जाएगा, परमाणु शक्ति के द्वारा फाड़ा जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है हमें एक ऐसा राज्य मिला है जो हिलाया नहीं जा सकता, आमीन, वहाँ पर वो संतों का राजा है। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल और यहाँ धरती पर भी मसीह के प्रतीकों और चिन्हों को देखें। पृथ्वी पर वो एक नबी था, क्या आप विश्वास करते हो? एक नबी वचन होता है, हम यह जानते हैं। नबी शब्द का अर्थ है वचन का एक दैविक अनुवादक। दैविक वचन लिखा हुआ है और नबी के पास परमेश्वर का दैविक आत्मा है जो उसमें है। और आप जानते हैं पुराने नियम में नबी को परमेश्वर कहा जाता था, कितने लोग यह जानते हैं? यीशु ने कहा यदि उन्होंने उन्हें परमेश्वर कहा तो क्या यह आपके नियम में नहीं है? वे है कि तुम परमेश्वर हो, और यदि वे उन्हें परमेश्वर कहते हैं तो जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है वो नबी, तुम कैसे दोष लगाओगे जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्योंकि उसे परमेश्वर बुलाया गया था, क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन यहोवा यो कहता है भरा हुआ था, इसलिए नबी शब्द का अर्थ है उसका अनुवाद मिलावटी नहीं होगा। देखा, यदि परमेश्वर वह कहता है यदि तुम्हारे बीच में कोई एक है जो आत्मिक है या भविष्यवक्ता है तो मैं प्रभु उससे बात करूंगा, वो जो कहता है वो पूरा होता है, तब उसकी सुने क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन यदि यह पूरा नहीं होता है तो उसकी मत सुनो, मैंने उसे नहीं भेजा है। यही तरीका है कि आप इसे जानते हैं। और फिर आप देखें वचन के दैविक अनुवाद को कलीसिया के लिए इस अंतिम प्रकाशन के साथ मेल खाना है। वो परमेश्वर है सर्व शक्तिमान, पृथ्वी पर वह एक नबी था, वो एक उकाब है। कितने लोग जानते हैं कि एक नबी को उकाब माना जाता है? एक उकाब सबसे बलवान पक्षी है जो हमारे पास है, सबसे शक्तिशाली। उनमें से कुछ के पंख 14 फुट तक फैले हुए होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। वह इतना ऊंचा उठ सकता है और उड़ सकता है कि यदि कोई दूसरा पक्षी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करे तो वह पक्षी फट जाएगा, उसमें से पंख निकल कर गिर जाएंगे और वह अलग अलग हो जाएगा। इसलिए क्यों? उकाब विशेष बना हुआ पक्षी है, और ऐसी क्या अच्छी बात है कि वो उसे ऊपर ऊंचाई में ले जाती है। क्या वह नहीं देख सकता कि वह क्या कर रहा है जब वह वहाँ ऊपर होता है? शिकरे की आँख की बात करते हैं, आपको तो उकाब की आँख को देखना है। एक शिकरे को देख सकते हैं, एक मुर्गी को देख सकते हैं, ये सही बात है। आज उनमें से कुछ शिकरों के साथ यही बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक उकाब इतना ऊपर जाता है, यदि एक शिकरा उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा, उसका दम घुट जाएगा, वह उन क्षेत्रों में नहीं जा सकता जहाँ उकाब जाता है। और फिर उसके पास एक आँख है जिससे वह दूर तक देख सकता है जब वह वहाँ ऊपर जाता है। तो यही कारण है कि परमेश्वर अपनी नबियों को उकाब कहता है, तो वहाँ ऊपर जाता है और वह एक उकाब है, वह बहुत दूर तक देख सकता है। और धरती पर मसीह एक उकाब था, जब वह मरा तो वो एक याजक था जिसने उसे एक मेमना बना दिया। क्या यह सही है? और जब वो फिर से आता है तो वो राजा होता है, सो वो एक सिंह होगा। आमीन। यहूदा के गोत्र का सिंह, आमीन। वो एक उकाब है, एक मेमना और एक सिंह है, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, नबी, याजक और राजा। वह जो था, जो है और आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, आदि से लेकर अंत तक अनंत परमेश्वर। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कुछ बहुमूल्य कैथोलिक लोग जो कहते हैं परमेश्वर की अनंत पुत्रत्वता, परमेश्वर परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का अनंत पुत्रत्व, आप ऐसे शब्द को कैसे कह सकते हैं? सातवीं कक्षा तक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इससे बेहतर जानता हूँ। पुत्र शब्द का होना एक शुरुआत को बताता है, तो वह कैसे अनंत हो सकता है और एक पुत्र हो सकता है? अनंत काल की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है, इसलिए वह एक पुत्र नहीं हो सकता। एक अनंत पुत्र है और फिर एक शुरुआत है, क्योंकि अनंत पुत्र जैसी कोई चीज नहीं है। एक पुत्र की शुरुआत थी, इसलिए वह अनंत नहीं हो सकता है। आप देखें, वह अनंत परमेश्वर है, न कि अनंत पुत्र। महिमा, वो सर्वशक्तिमान यहोवा यिरे, यहोवा राफा, जो शरीर में प्रकट बना, उसमें परमेश्वरत्व की देह की परिपूर्णता वास करती थी। और पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब वह अग्नि का खंभा लोगों के ऊपर आ गया, क्या आपने ध्यान किया? इसने खुद को विभाजित किया और अग्नि की जीवे उनमें से हर एक पर आकर बैठ गई। अग्नि जीवों की नाई हर एक पर बैठती है। परमेश्वर क्या कर रहा था? खुद को कलीसिया के अंदर विभाजित करते हुए, हर एक के बीच महिलाओं को देते हुए, पुरुषों और उन सभी को देते हुए, यह उसकी आत्मा के भागीदार थे, उसके कलीसिया के बीच खुद को विभाजित करते हुए। साथ ही कैसे एक मनुष्य आकर और कह सकता है वो पवित्र मनुष्य, वो पोप है, पवित्र मनुष्य वो बिशप है, पवित्र मनुष्य मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। आप भला कैसे कह सकते हैं कि आम जनता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है? आप में से हर एक के पास कहने के लिए कुछ तो है, आप में से हर एक के पास करने के लिए कुछ काम है, आप में से हर एक को एक संदेश को लेकर आगे जाना है। महिमा, पवित्र आत्मा ने पेंटिकॉस्ट के दिन खुद को विभाजित कर लिया। परमेश्वर स्वयं को विभाजित करता है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। उस दिन पवित्र आत्मा पूरी तरह से सब में, सभी में से होते हुए, आमीन, वहाँ है वो। पवित्र आत्मा के पास कहीं भी बढ़ने का एक अधिकार होता है, वो जहाँ कहीं भी जाना चाहता है। जिस किसी पर भी वो चाहता है। आपको उस बात को नहीं लेना है कोई बिशप या कोई याजक कहता है, केवल वही हमारा एकमात्र याजक है। सही है, एक महायाजक है, अब नबी, याजक और राजा है। अब और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, हम इसमें जाएंगे और पृथ्वी की राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से धोया है। वहाँ पर वो शब्द धोया गया, असल में यूनानी में इसका अर्थ है छुड़ा लेना। उसने हमें यहाँ से छुड़ा लिया। हम अपने पाप के द्वारा धरती से बंधे हुए थे। हम देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, स्वर्ग की कोई धारणा या कुछ भी नहीं था। लेकिन जब लहू नीचे उतर आया तो उसने लकीर को काट दिया और हम छुड़ा लिए गए। ओह, मैं एक समय कहानी को पढ़ रहा था, ये जो ठीक यहाँ पर सही बैठ सकती है। एक किसान ने एक कौवे को पकड़ा और उसने उसे बांध दिया और उसने कहा, मैं दूसरे कौवों को सबक सिखाऊंगा। सो उसने उस पुराने कौवे को लिया और एक पैर से एक रस्सी के साथ बांध दिया और उस बेचारी पुरानी सी चीज को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। वो बहुत ही कमजोर था, वो मुश्किल से यहाँ वहाँ घूम सकता था। ऐसा ही है, इनमें से कुछ संगठनों और कलीसियाओं ने लोगों को बांध दिया है, बस नहीं जा सकते हो तो बस तुम इतना ही दूर जा सकते हो। अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं। जी हाँ, आप बस बंधे हुए हो, बस ऐसा ही है। पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, वह अन्य भाषा में नहीं बोलता है जैसे वो बोला करता था। वो परमेश्वर है, वो बस कल आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8, सारे कलीसियाओं में रहते हुए हम इसे सुबह को लेने के बाद इस बात पर जाएंगे, समझे। वह परमेश्वर है जो हर कलीसिया के युग में रहता है, वह हर कलीसिया के युग में रहेगा और उसके लोगों में रहेगा अनंत काल के लिए, क्योंकि अब हमारे पास है, हमारे अंदर है, जो अनंत जीवन है। सो इस संप्रदाय ने उसे बांध दिया था। देखो, ठीक है, अद्भुत कार्य करने के दिन बीत गए हैं, दैविक चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। बेचारा पुराना कौवा साथ ही बेड़ी से बंधा हुआ है, इतना तक कि वह इतना बेचारा बन गया था कि वह मुश्किल से चल सकता था। और एक दिन वहाँ पर एक भला मनुष्य आया और उसने कहा, तुम जानते हो वो पुराना बेचारा कौवा, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। आखिरकार वह अपने दाने को खाते आ रहा है, लेकिन केवल वही एकमात्र जरिया है जिससे वह जीवित रहता है। उसके पास खाने के लिए कुछ होना है, सो उसे कोई अंतर नहीं पता था, वह अभी दाने को खा रहा था। तो यदि तब उसे उसके लिए लिया और अपने चाकू को निकालकर और पुराने कौवे की रस्सी को काटकर आजाद कर दिया। और आप जानते हैं, यहाँ दूसरे कौवे आते हैं, कहते हैं, आओ जॉनी कौवे, आओ दक्षिण की ओर चलें, ठंड का मौसम आ रहा है। क्या आप जानते हैं, वह कौवा बस उतनी ही दूर तक जाएगा जितना वो वहाँ तक जा सकता है। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह नहीं होता है, यह इस दिन में हमारे लिए नहीं है, हम बस ऐसा नहीं कर सकते, समझे। वह इतने समय तक बंधा रहा, यहाँ तक उसे लगता है कि वह अभी भी बंधा हुआ है, समझे। और इसी तरह बहुत से लोगों के साथ है, आप संस्था और संप्रदाय के साथ बंधे हुए हैं, जो वहाँ पहले की पुरानी माता वैश्य से है। आपको बता रहे हैं कि यीशु मसीह एक जैसा नहीं है, और चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई बपतिस्मा नहीं है, ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं है। आपको ये सब बताने की कोशिश करते हैं, आप इतने लंबे समय तक बंधे रहे, इतना तक आप अभी भी ये सोचते हैं कि आप बंधे हुए हैं। वो भला मनुष्य मसीह, उसने अपना लहू दिया कि वह हमें धो सके और हमें हमारे पाप से छुड़ा सके। पाप क्या है, मैं किसी से पूछूंगा कि बताए, पाप क्या है? पाप अविश्वास है। यह सही बात है, जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और आपका पाप ही आपकी एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आजाद होने से रोके रखती है। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके अविश्वास से आजाद कर दिया है, लेकिन आप संप्रदाय से इतने बंधे हुए हैं, इतना तक कि आप अब भी सोचते हैं कि आप बंधे हुए हैं बस भूखा मरने के लिए। देखो, यहाँ वहाँ बंधन में बंधे हुए, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, वे मुझे कहते हैं मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट हूँ, अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तुम बेचारे भूखे कौवे, तुम आज सुबह क्यों नहीं आ जाते, तुम दूर क्यों नहीं उड़ जाते। हालेलुया, एक भोर के पंखों के साथ उठो और अपने धार्मिकता के सूर्य की ओर दूर उड़ जाओ अपने पंखों में चंगाई के साथ, आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाइयों बहनों। ओह, उसने कहा, पुत्र जिसे आजाद करता है वह सचमुच में आजाद है। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है मेरा पास्टर, इस विषय में कुछ नहीं, बाइबल ने कहा आप आजाद हैं, यह सही है, तुम आजाद हो। मेरी कलीसिया, तो ठीक है, आजाद हो जाएं, हमें धोया गया है और हमारे संप्रदाय से छुड़ाया है उसके अपने लहू में और हमें आजाद किया है, तो हम अपने आप के लिए सोच सकते हैं और अपने आप के लिए सोच सकते हैं और अपने आप के लिए कर सकते हैं, अपने आप के लिए बात कर सकते हैं और अपने आप के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है, यदि मैं वापस जाकर और पास्टर से कहूं कि मुझे फिर से बपतिस्मा लेना था, तो वह कहेगा इसके बारे में क्या, तुम आजाद हो, यह एक प्रकाशन है, आप जानते हैं। तो ठीक है, तुम आजाद हो। यदि आप पर इस तरह से कुछ नमक डालने की तरह छिड़काव किया जाता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, तो आज सुबह यहाँ उसमें पानी के साथ कुंड तैयार है, समझे। जी हाँ श्रीमान, यह बपतिस्मा सही नहीं है। सो अब आप और बंधे हुए नहीं हैं, आप आजाद हैं। लेकिन हो सकता है आप यह नहीं जानते हैं, लेकिन आज सुबह आपको बता दूं, बाइबल ने कहा उसने हमें हमारे पापों से, हमारे अविश्वास से छुड़ाया है, जिससे हम यीशु मसीह के प्रकाशन को पा सके। दूर चले जाओ, तुम आजाद हो। इसके बारे में किसी भी कलीसिया का क्या कहना है उसे लेना है, परमेश्वर का इसके बारे में क्या कहना है उसे ले लो। यहाँ वो इसका प्रकाशन प्रकट कर रहा है कि वह कौन है। मैं हमेशा ही सोचता था कि परमेश्वर पिता की लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल थे और पुत्र एक मध्य वर्ग के उम्र का मनुष्य था और पवित्र आत्मा शुभ प्रतीक का लड़का था। भाई, यह पागानवाद मूर्ति पूजक है। यदि आप तीन परमेश्वरों में विश्वास करते हैं तो यह पागान मूर्ति पूजक है। वो सबसे पहली आज्ञा क्या है, यह सुनो, हे इज़राइल, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक परमेश्वर हूँ। बस ऐसा ही है, वह एक परमेश्वर है, ना ही तीन परमेश्वर। वह तीन कार्य स्थानों में रहा, तीन स्थानों पर कार्य किया। वह नबी, याजक और राजा है। वह उकाब, मेमना और सिंह है। वह सोसन का फूल है, शारुन का गुलाब, सोसन का फूल और भोर का तारा, दाऊद का बीज और वंश है। वह ए से लेकर जेड है। वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वह वो सब है, लेकिन वो एक है। वो एक परमेश्वर है। वह उसके शीर्षक है जो उसके लिए है, लेकिन एक परमेश्वर है। कभी भी कोई भी बाइबल का कोई भी पन्ना और न ही इतिहास में ऐसा हुआ जब तक कि कैथोलिक कलीसिया ने आकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डुबाकर बपतिस्मा को नहीं ले लिया। यदि आप मुझे पन्ने से या कहीं से भी दिखाते हैं, तो आप इसे लिखकर इसे आज रात मेरे पास रख दें और मैं कलीसिया से निकलकर चला जाऊंगा कहते हुए मैं एक ढोंगी हूँ, मैंने लोगों को गलत सिखाया है। यदि आप मुझे वचन में से एक लेख भी दिखा सकते हैं या मेरे पास एक भी इतिहास को लेकर आए, सच्चा इतिहास लाएं, जो मुझे यह दिखाएगा कि जहां लोगों ने कभी बाइबल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया था, या मेरे पास एक वचन या इतिहास की एक किताब को लाएं, एक पन्ना इतिहास में का एक हवाला, जहां किसी को भी कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था, कैथोलिक कलीसिया की नीसेन परिषद आने तक, आए इसे मेरे पास लाए और मैं अपनी पीठ पर एक चिन्ह को लगाऊंगा और जेफरसन विले पर से चलूंगा और आप मेरे पीछे एक भोपू को बजाना। मैं वहाँ लिखूंगा एक झूठा भविष्यवक्ता जो लोगों को गुमराह कर रहा है। और पास्टर, यदि आप आज सुबह यहाँ पर हैं, तो आप ऐसा करें, आप मुझे आपके लिए वैसा ही करने दें, समझे, आकर मुझे दिखाएं, लेकिन आप डरते हो। अब ये क्या है? यह प्रकाशन है, यह प्रकाशन है और यह पवित्र आत्मा है, मसीह जो कलीसियाओं को अपना संदेश भेज रहा है। इसे सुने, इसे सुने, यही है जो बाइबल सिखाती है। यह कहाँ पर आया था? यदि आप अब गुस्सा नहीं है, तो जाकर पूरे सप्ताह भर आप निसिया परिषद को पढ़ें, हिस्लॉप की टू बेबीलोन को पढ़ें। जाकर अब जोसेफस का इतिहास ठीक है, लेकिन उसने केवल मसीह के एक ही अंतरे को लिखा है। कहा यीशु नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ वहाँ जाकर लोगों को चंगा करता था और वह मर गया। नहीं नहीं, पिलातुस ने उसे मार डाला और या हेरोदेस या उसे मौत के घाट उतार दिया। और तब चेलों ने जाकर उसके शरीर को चुरा लिया और उसे छिपा दिया। और फिर रोज रात को वे जाते और उसमें से एक टुकड़ा काट कर इसे खाते हैं। कहा वे नरभक्षी थे, तो वे प्रभु को ले रहे थे। आप देखें, शारीरिक दिमाग जोसेफस कोई भी नहीं था कि हम उसकी सुने। लेकिन फॉक्स बुक ऑफ मार्टियस, इस किताब को लें, वहाँ एक अच्छा प्रमाण है। फॉक्स बुक ऑफ मार्टियस कितनों ने कभी से पढ़ा है? निश्चय ही पेमर्स की अर्ली एजेस या हिस्लॉप्स की टू बेबीलोन या कुछ बड़े प्रमाण, या वो हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो है निसिया परिषद, पूर्व निसिया परिषद और निसिया परिषद, और आप वहाँ ढूंढें जिसका कभी उल्लेख नहीं किया गया, ना ही कोई व्यक्ति का। पवित्र वचनों को लें और देखें कि क्या बाइबल में कभी किसी ने बपतिस्मा लिया था उन शीर्षकों का उपयोग करते हुए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यह तीन परमेश्वर को दर्शाता है। यह तो एक पागान के समारोह के लिए है और कैथोलिकवाद दुनिया भर में मसीहत का एक पागान रूप होने के अलावा और कुछ नहीं है। और कैथोलिक कलीसिया से मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और इत्यादि आए, लेकिन अंतिम दिनों में वहाँ एक द्वार को रखा गया था जिसने सत्य को वापस खोल दिया, जो कि बाइबल ने ऐसा कहा। और महान नबी जो अंतिम दिनों में धरती पर आने वाले थे और हम विश्वास करते हैं कि वह आ रहा है, देखना और उसके पास एक कलीसिया होगी, अभी हम इसे देखेंगे। अब याद रखें, यह प्रकाशन है, आप इसमें से नहीं निकाल सकते। अब क्या ही चुनौती है, बाइबल में एक व्यक्ति को ढूंढें, एक भी स्थान पर उन्होंने कभी भी किसी को भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया हो या कभी किसी पर छिड़काव किया हो उनके पापों की क्षमा के लिए, इसे बाइबल में ढूंढें, उन्होंने कभी भी नहीं किया। और हर एक व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस तरह का बपतिस्मा दिया गया था, उन्हें आना था और फिर से बपतिस्मा लेना था यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा को पाने के लिए। प्रेरितों के काम 19, पौलुस एफिसस के ऊपरी तट से होकर गुजरा, वो वहाँ कुछ चेलों से मिलता है। उसने कहा, चेले, उनकी एक बड़ी सभा हो रही थी, वे अपुलोस नामक एक व्यक्ति का अनुसरण कर रहे थे जो एक परिवर्तित व्यवस्थापक था, एक बैप्टिस्ट जो यूहन्ना देने वाले पर विश्वास करता था और वचनों के द्वारा साबित कर रहा था कि यीशु ही वो मसीह था। पौलुस वहाँ से गुजरा और एक्विला और प्रिस्किला को देखा, वचन के 18वें अध्याय में, और फिर उसने वहाँ जाकर एक्विला और प्रिस्किला के साथ रात्रि भोज किया या ऐसा ही कुछ, और उन्होंने उसे इस महान पुरुष के बारे में बताया। वे उससे सुनने के लिए गए, उसने उस रात को उसको सुना, उसने कहा, वो बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल अच्छी बात है, यह अच्छा है, लेकिन कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो वहाँ पहले के बेचारे बैप्टिस्टों के बारे में क्या है जो विश्वास करते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं तो आप पवित्र आत्मा को पाते हैं? उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? किसी ने कहा, उसमें ऐसा नहीं लिखा था। मैं इसकी चुनौती देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर प्रमाणिक यूनानी है, इब्रानी भी है। बाइबल यूनानी में कहती है और दोनों में, इब्रानी और अरेबिक में भी, उन सारे तीनों में मैंने उन्हें ठीक यहाँ पर रखा है। कहता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यह सही है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब उसने कहा, हम नहीं जानते कि कोई पवित्र आत्मा है या नहीं। फिर उसने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा, हम पहले से ही उस मनुष्य के द्वारा बपतिस्मा ले चुके हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किया था। हमने यूहन्ना के बपतिस्मे के निमित्त बपतिस्मा लिया, शायद पानी का वही कुंड, वही मनुष्य। पौलुस ने कहा, यह काम नहीं करेगा, उसने केवल पश्चाताप के निमित्त बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा के लिए नहीं। अब आप में से कुछ वननेस के लोग, यहाँ के लोग आकर और गलत बपतिस्मा को लेते हैं। आप उद्धार के लिए उस बपतिस्मा को लेते हैं। पानी एक मनुष्य को नहीं बचाता है, यह तो लहू है, पश्चाताप है, न ही बपतिस्मा के जरिए से फिर से उत्पन्न करना। नहीं श्रीमान, फिर से उत्पन्न करना आत्मा के द्वारा आता है। बपतिस्मा तो एक बाहरी रूप से व्यक्त करना है जो फिर से उत्पन्न के अंदरूनी कार्य का है जिसे किया गया है, समझे? तो ठीक है, ध्यान दें। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, उसने कहा, हम नहीं जानते कि कोई पवित्र आत्मा है या नहीं। उसने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? कहा, हमने यूहन्ना के निमित्त बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा, यूहन्ना ने वास्तव में पश्चाताप करने के निमित्त बपतिस्मा लिया, पश्चाताप के लिए, यह कहते हुए कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, वो मेमना, उस बलिदान को आना था प्रभु यीशु मसीह पर। और जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर फिर से बपतिस्मा लिया था और पौलुस ने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और अन्य जुबान में बात की और भविष्यवाणी को किया। मुझे बताएं कि ये वचन नहीं है, और मुझे कहीं से भी दिखाएं कि किसी को भी कभी भी नए नियम में किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा दिया गया था प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा। मुझे दिखाएं, संत अगबस और बहुत से वहाँ पर दूसरे थे जिन्होंने वहाँ आगे बपतिस्मा लिया था निसिया परिषद के समय तक, और उनमें से हर एक जन ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। मिशनरियों ने यीशु मसीह के नाम के साथ खेतों की कटनी की, लेकिन जब निसिया परिषद आया तो उनके पास तीन परमेश्वर होने थे। उन्होंने पौलुस को लिया या जुपिटर को नीचे ले आए और पौलुस को ऊपर रख दिया। उन्होंने वीनस को नीचे लिया और मरियम को ऊपर रख दिया। उनके पास सभी प्रकार के परमेश्वर थे, सभी प्रकार के संत और अन्य सभी चीजें थी, और एक त्रिएकता के बपतिस्मे को लिया और प्रोटेस्टेंटों को इसे सिखाया, और वे अभी भी इसे निगल रहे हैं। लेकिन अब संध्या का उजियाला आ गया है। नबी ने कहा, ये संध्या के समय में उजियाला होगा, ये संध्या के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग तुम निश्चय ही पाओगे जल के पथ में, यही आज का उजियाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में दफन हुआ। जवान और बूढ़े अपने सारे पापों का पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा निश्चय ही प्रवेश करेगा। संध्या का उजाला आ गया है। यह सच है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। आप इसे विश्वास करते हैं? पत्रस ने कहा, पेंटिकॉस्ट के दिन पर यह जान लो कि तुम जो इज़राइल के घराने हो, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों। दूसरे अध्याय का 16वां पद, जी हाँ, परमेश्वर ने उसी यीशु को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों। इज़राइल के सारे घरानों, निश्चय ही तू जान ले। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक यहूदी से बात की यहाँ ऊपर दाऊद के घर पर। उसने कहा, तुम अन्य जातियों परमेश्वर को तीन भागों में काटकर और एक यहूदी को नहीं देख सकते हो, हम इससे बेहतर जानते हैं। मैंने कहा, बस यही है रब्बी, हम परमेश्वर को तीन भागों में नहीं काटते। मैंने कहा, आप नबियों पर विश्वास करते हो? उसने कहा, निश्चित रूप से। मैंने कहा, क्या आप यशायाह 9:6 पर विश्वास करते हो? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, नबी किसके लिए बोल रहा था? मसीहा। मैंने कहा, मसीहा का परमेश्वर से क्या संबंध होगा? उसने कहा, वह परमेश्वर होगा। मैंने कहा, यह सही बात है, आमीन। देखिए, आप वहीं पर हैं। देखिए, आप उसे तीन भागों में नहीं काट सकते। यदि आप जो यहाँ मिशनरी हैं, उनमें से एक यहाँ यहूदियों के पास जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ वो मनुष्य यहाँ पर बैठा हुआ है, आप कभी भी यहूदी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा देने की कोशिश ना करें। वो आपको तुरंत ही बताएगा, वह जानता है यह कहाँ से आया है, निसियन परिषद से। वह इसे नहीं सुनेगा। लेकिन आप उसे देखने दें कि परमेश्वर देहधारी कहाँ हुआ था, और वो वहाँ पर एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा था। हमें पवित्र करने के लिए उठा लिया गया जिससे वह खुद पवित्र आत्मा के रूप में आ सके। परमेश्वर, पिता, पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति है। बाइबल ने कहा, यीशु मसीह की वंशावली में मत्ती के पहले अध्याय में इसने कहा, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और आगे कहा, और फिर मुझे इसे पढ़ने दे, और उसके बाद अब आप जान जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मत्ती पहला अध्याय, और हम अब 18 पद पर आरंभ करते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पिता, वो परमेश्वर, क्या यह इस तरह से पढ़ा जाता है? वो एक बालक किसका पाया गया था? मैंने सोचा था कि परमेश्वर वो पिता, उसका पिता था। तब परमेश्वर, पिता और पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है, या उसके दो पिता थे। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, ना ही इच्छा से और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग करने की मनसा की। लेकिन जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह परमेश्वर और पिता, पवित्र आत्मा। तब यीशु मसीह का पिता कौन था? पवित्र आत्मा। तो तुम में क्या है? तो ठीक है, यही परमेश्वर है, वो पिता भी है, क्या नहीं है? बिल्कुल। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ वो परमेश्वर पिता है, यहाँ परमेश्वर वो पवित्र आत्मा है, और यहाँ परमेश्वर पुत्र है। देखो, यह तो तीन परमेश्वर है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है, इस दो को एक ही होना है, या तो उसके दो पिता हैं, समझे? उसके दो पिता नहीं हो सकते हैं, आप ये जानते हैं। अब वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। यह मत्ती का पहला अध्याय है, मत्ती 28:19, जहाँ यीशु ने कहा, जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु मसीह। बिल्कुल। आप एक प्रेम कहानी को पढ़ते हैं जो कहती है, जॉन और मैरी उसके बाद हमेशा खुश रहते थे। जॉन और मैरी कौन है? कहानी के पहले भाग पर जाकर और पता करें। यदि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई नाम नहीं है, पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा, तो कौन है? ये किसका नाम है? वापस जाकर कहानी के पहले भाग पर और देखें ये किसके बारे में बोल रहा था। पेंटिकॉस्ट के दिन पत्रस ने कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। उसके पास प्रकाशन था, योन्ना के पास प्रकाशन था, यीशु वो प्रकाशन था। उसने खुद को ठीक यहाँ वचन में प्रस्तुत किया, मैं वो हूँ जो था, जो है और आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। तो ठीक है, अब सातवें पद को देखेंगे। अब जल्दी से, क्योंकि हमें जल्दी से निकलना है, बस जितना जल्दी हम कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परा महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। उस प्रकाशन को देखें, यह कैसे प्रकट हुआ, कैसे परमेश्वर पुरुष अपने सिर को खरोचते हैं और अपने बालों को नोचते हैं और इत्यादि, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, एक में तीन को बनाते हैं। अपने बालों को न नोचें और न अपने सिर को खरोचें, केवल ऊपर देखें। प्रकाशन ऊपर से आता है और यह सही बात है, वो प्रकट करेगा। ये कोई पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है, यह तो तीन कार्य करने के स्थान है जिसमें एक परमेश्वर रहता है। ये कार्य करने के स्थान में था वो आत्मा स्वयं से, क्योंकि मनुष्य जाति अपने स्तर से नीचे गिर रही है, तब उसने खुद के लिए एक शरीर को बनाया, उसमें रहा अपने खुद के लहू का उत्पादन करने के लिए, न ही यौन संबंध के द्वारा जैसे कि ये अदन के बगीचे में था, लेकिन एक रचनात्मक शरीर का उत्पादन किया था। और उस कुआरी से जन्मे देह के जरिए से उसने एक ऐसा लहू दिया जिसने हमें पवित्र किया और हमें हमारे अविश्वास से आजाद कर दिया, ताकि उस पर विश्वास करें। तब हम ऐसा करते हैं, हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, यही हम में परमेश्वर होता है, परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, समझे। बिल्कुल जैसे नबी याजक और राजा, यह बिल्कुल उसी तरह ही बात है। तो ठीक है, अब सातवां पद, यह घोषणा है, यह घोषणा है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ओह, हमारे पास कितना समय है, यह वहाँ सुंदर है। क्या आप कुछ और समय दे, 20 मिनट का समय दे सकते हैं, क्या आप दे सकते हैं? तो ठीक है, अब फिर कल, आज रात को हम बाकी को पत्मुस के पत्रस में जानने की कोशिश करेंगे। आज रात को, आज हम घोषणा पर समाप्त करेंगे। ओह, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप इस पुरानी बाइबल से प्रेम करते हैं, यह प्रकाशन है। क्या ये क्या है, परमेश्वर इस किताब में उतर कर आता है और पर्दे को हटाता है, कहता है वहाँ है वो नबी याजक राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वह था वो है और आने वाला है, ये सारी चीजें, ये परमेश्वर है। अब आइए पर्दे को हटाएं, बस कुछ मिनटों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी आंखों से पर्दे को उठाएं और देखो वह बादलों के साथ आता है। अब वो कैसे आ रहा है, बादल के साथ, किस प्रकार का बादल, महिमा के बादल, इनमें एक भी गरजने वाला बादल नहीं, ना बारिश का बादल, लेकिन महिमा के बादल। आप देखेंगे कि किस तरह का बादल जिसे वो ओढ़े हुए था, जब पतरस और उन लोगों ने रूपांतर के पहाड़ पर उसके दर्शन को देखा, एक बादल उस पर छाया किए हुए था, उसके वस्त्र उज्जवल हो गए, वह एक बादल को ओढ़े हुए था जो परमेश्वर की सामर्थ है। ओह, हम यहाँ उन कलीसिया युगों पर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यह बस इसे सोचने पर मेरे सबसे अंदरूनी भाग में जागरूकता आ जाती है, जो उसका आगमन, मैं इस दिन को देखता हूँ कि हम जिसमें रह रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं बचा है, कोई आशा नहीं बची है सिवाय उसके आगमन के। अब हम जल्दी से इसे ले लेंगे, अब याद रखना, हर आंख उसे देखेगी। अब तब ये रैप्चर नहीं था, क्या था, देखा, रैप्चर नहीं था, यह रैप्चर नहीं था, यह किसके लिए बोल रहा था, उसके दूसरे आगमन के लिए, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अब हम वापस जाकर और कुछ इतिहास को देखेंगे, आइए हम जकरिया में वापस जाएंगे और जकरिया का 12वां अध्याय लेंगे। जकरिया, तो ठीक है, और प्रभु को प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ता है, जैसे कि बचा लिए जाएं यीशु मसीह के एक अच्छे प्रकाशन के लिए। हम कितने धन्यवादित हैं, क्या आप उसके लिए खुश नहीं हैं? अब हम इसमें जाएंगे जो किताब के रूप में है, जितना जल्दी संभव हो सकता है इसे करेंगे लोगों के लिए, और उसके बाद आपके पास ये किताब हो सकती है, इस किताब को आपके अपने कमरे की शांति में पढ़ सकते हैं और इत्यादि, और इसका अपने आप से अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है, जकरिया, वो जकरिया, अब जकरिया का 12वां अध्याय, और हम चाहते हैं अब इसे वास्तव में प्रार्थना पूर्वक लें, और मैं इसे परमेश्वर की महिमा के लिए लेना चाहता हूँ। अब जकरिया 12, आइए नवे पद पर आरंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनना, वो आगमन के लिए बोल रहा है। जकरिया 12 और हम नवे पद पर आरंभ करेंगे और उस समय पर होगा। जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है मसीह के आगमन से 487 वर्ष पहले, और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। इसे सोचें। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है। अब सुसमाचार कब यहूदियों के पास वापस लौटता है? जब अन्य जातियों के दिन समाप्त हो जाते हैं। सुसमाचार तैयार है यहूदियों के पास जाने के लिए। ओह, मैं कर सकता यदि मैं बस आगे होने वाली बातों को आपको थोड़ा कुछ बता सकता था, जो कि ठीक यहाँ होने पर है। देखिए, ठीक इस दिन में, आप समझे, यह होना तय है। हम इसे कलीसिया युग में लेंगे, और यह महान बात जो घटित होने के लिए तय है, जो प्रकाशित वाक्य 11 तक ले जाएगी और उन दो नबियों को उठाएगी, एलिया और मूसा, जो यहूदियों के लिए फिर से वापस जा रहे हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। हर एक चीज क्रम में रखी हुई है, बस तैयार है। यह अन्य जातियों का संदेश, जैसा कि यहूदियों ने इसे अन्य जातियों के लिए लाया, अन्य जाति इसे फिर से ठीक यहूदियों के पास वापस ले जाएंगे और रैप्चर हो जाएगा। अब याद रखना, यह यहाँ पर आता है महासंकट के बाद। कलीसिया महासंकट में से होकर नहीं जाती है, हम ये जानते हैं, बाइबल ऐसा कहती है। देखा तो ठीक है, अब वो इज़राइल के घराने पर उंडेल देगा, क्या उसी पवित्र आत्मा को, अन्य जाति कलीसिया के चले जाने के बाद। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में, हदिमोन में हुआ था, और सारे देश में विलाप होगा। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। जब वे देखेंगे क्या होगा, क्या बात जगह लेगी, जब वो महिमा के बादलों में आएगा, उसकी दूसरी उपस्थिति में, और जब उन यहूदियों ने जो उन्हें छेदा है, आप जानते हैं, एक और वचन कहता है कि वे उनसे पूछेंगे, उसे ये घाव कहाँ से मिले, उसने कहा मेरे मित्र के घराने में। और ना ही केवल यह यहूदियों के लिए एक शोकपूर्ण समय होगा जिन्होंने उसे मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह उनके लिए एक शोकपूर्ण समय होगा उन अन्य जातियों के लिए जो यहाँ पीछे बचे हुए हैं, जिन्होंने उसे इस दिन पर अपने मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। वे विलाप करेंगे और रोते रहेंगे, रोई हुई कुंवारी विलाप करेगी। यही वो कलीसिया है जिसने उसके उजाले में तेल लेने से अस्वीकार कर दिया था। वहाँ 10 कुंवारियाँ निकल पड़ी, सारे अच्छे लोग थे, लेकिन उनमें से 5 के दियो में तेल था। दूसरे 5 अच्छे लोग थे, भले लोग थे, लेकिन वे अपने दियो में तेल लेने में असफल रहे, और उन्हें बाहर अंधकार में डाल दिया गया, जहाँ विलाप करना, रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ है ये, वे विलाप करेंगे। बाइबल ने यहाँ कहा वे विलाप करेंगे, उनका हृदय इतना टूटा हुआ होगा, इतना तक कि, यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊंगा, उत्पत्ति 45, यदि आप इसे लेना चाहते हैं, आइए इसे लेंगे बस कुछ क्षण के लिए, और इसे उत्पत्ति में भी पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ उत्पत्ति के 45वें अध्याय में, मैं यहाँ इसे लेना चाहता हूँ, यूसुफ जो अपने लोगों को खुद को प्रकट कर रहा है, और हम इसे ले लेंगे बस ये दिखाने के लिए, वे प्रतिछाया थी कि उस दिन में क्या बात जगह लेने वाली है, तब हम इसे एक साथ जोड़ देंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। अब याद रखें, यूसुफ अपने आप को ज्ञात करवाते हुए वह रोया, सब लोगों को मेरे सामने से बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्त्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला, वह अवश्य ही चिल्लाया होगा। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे जिसे तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। ओह कितना सुंदर है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। मैं बस अब इसे ले लूंगा और इसे जकरयाह 12 के साथ तुलना करूंगा, बस कुछ क्षण के लिए। अब हम यह जानते हैं प्रतिछाया में, यदि आप प्रतिछाया में सिखाते हैं तो आपको हमेशा ही सही बात मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ प्रतिछाया में। अब यूसुफ जब उसने जन्म लिया था तो उसे अपने भाइयों के द्वारा घृणित किया गया था, क्या यह सही है? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूसुफ आत्मा से भरी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। यूसुफ को अपने भाइयों के द्वारा घृणित किया गया था, क्यों? क्योंकि वह आत्मिक था। यूसुफ कोई सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह दर्शन को देख सकता था। वह सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह सपनों को देखता था और सपने का अनुवाद कर सकता था। वो यही था जो उसमें था, वह कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकता था सिवाय उसके जो उसमें था। तो ठीक है, तो उसके भाइयों ने उससे घृणा की बिना किसी कारण के, लेकिन उसके पिता ने उससे प्रेम किया था क्योंकि उसका पिता एक नबी था। देखा यह बात यीशु के साथ किस तरह से थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम किया, लेकिन भाइयों ने, फरीसियों और सदुकियों ने उससे घृणा की क्योंकि वह बीमारों को चंगा कर सकता था और होने वाली बातों को पहले से बता सकता था और दर्शनों को देखता था, अनुवाद को कर सकता था। समझे मेरा क्या अर्थ है? उन्होंने उससे बिना किसी कारण से घृणा की थी। और उन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया? उन्होंने नाटक को किया कि वह मर चुका है और उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। लहूलुहान वस्त्र को लिया जो 7 रंगों का था, जिसे उसके पिता ने, वहाँ मेघधनुष में केवल 7 रंग होते हैं और मेघधनुष हम ये जानते हैं कि हम इसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे। मैं सोचता हूँ आज रात को यह उस पर मेघधनुष था यीशु, जहाँ वह यशप और माणिक पत्थर और मेघधनुष सा दिखाई पड़ता है। एक मेघधनुष एक वाचा है और यह यूसुफ पर परमेश्वर की वाचा थी। और फिर उन्होंने उसके वस्त्र पर लहू को लगाया और उसके पिता के पास वस्त्र को वापस ले गए और वो मरने वाला था, और लेकिन उसे खड्डे से बाहर निकाला गया था और उसे एक फिरौन को बेच दिया गया। मिस्र में किसी को तो बेचा गया और एक सेनापति ने उसे रख लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके विरोध में एक गलत बात ऊपर आई और उसे जेल में डाल दिया, और वहाँ उसने भविष्यवाणी की और 2 व्यक्तियों को बताया कि वो एक कहाँ जाएगा और दूसरा एक कहाँ पर जाएगा, पिलाने हारा और पकाने हारा उनके सपने के हिसाब से। और फिर उसे वहाँ से ऊंचा किया गया था फिरौन के दाहिने हाथ की ओर, और कोई भी मनुष्य फिरौन को नहीं छू सकता था केवल यूसुफ के जरिए से। यह क्या, अब जब यूसुफ को तब मिस्त्रियों के लिए बेच दिया गया था और देखो उसने जो कुछ किया, यह मसीह की प्रतिछाया थी। इस पिलाने हारा और पकाने हारा को देखें, और उन दोनों के पास सपने थे। और यीशु जब वो उसके कैद खाने में था, याद रखना यूसुफ कैद में था, और जब यीशु उसके कैद खाने में था, कैसे? एक क्रूस पर किलो से टंगा हुआ, वहाँ पर एक बचाया गया था और एक नष्ट हुआ था। यूसुफ जब वो उसके कैद में था, एक को बचा लिया गया था, एक नष्ट हुआ था। और ध्यान देना, तब बाद में यीशु को क्रूस पर से उठा लिया गया था, वह स्वर्ग में उठा लिया गया और उस महान आत्मा यहोवा के दाहिने हाथ में बैठता है। बिना मेरे कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। न ही कोई मरियम तेरी जय, न ही यह धन्य हो या वो धन्य हो के जरिए से, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र बिचवाई है, वो बहुमूल्य देह है जिसमें से होकर परमेश्वर ने हमारे बीच में वास किया, जिसने परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर ने मनुष्य का नाम लिया, परमेश्वर ने लिया। यहाँ देखना, आरंभ में जब आदम, मैं बस उससे दूर नहीं जा सकता, ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो इसे नहीं समझ रहा है कहीं पर। तो देखो आरंभ में, मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा करने के लिए आज्ञा दे रहा है। मैं 1 मिनट के लिए अपना विषय छोड़ रहा हूँ। जब महिमा में पहली खबर मिली कि पुत्र खो चुका है, वो आदम, क्या परमेश्वर ने एक दूत को भेजा? क्या उसने पुत्र को भेजा? क्या उसने किसी और को भेजा? वह स्वयं आया ताकि अपने खोए हुए पुत्र को छुड़ाए। हालेलुया! परमेश्वर ने इसका किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय खुद के। परमेश्वर जेदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और उसने स्वयं मनुष्य को छुड़ाया। यह हम बचाए गए हैं, बाइबल ने कहा, परमेश्वर के लहू के द्वारा। मरणहार परमेश्वर, अमरहार परमेश्वर मरणहार बन गया था, जिससे कि पाप को दूर करे, खुद मेमना बन जाए ताकि महिमा में प्रवेश करे। पर्दा हुआ और उसके सामने अपने स्वयं के लहू के साथ हो, पर्दे के उस पार। अब यूसुफ वहाँ मिस्र में चला जाता है और वहाँ उसे कैद से निकालकर ऊंचा किया गया फिरौन के दाहिने हाथ पर और उसे कार्यवाहक बनाया गया। और यूसुफ के दिनों में सब कुछ फलने फूलने लगा था। अब जब यीशु वापस आता है, यहाँ तक कि रेगिस्तान भी गुलाब की तरह खिल उठेगा। वह फलने फूलने का पुत्र है, यूसुफ की प्रतिछाया। उन्होंने यूसुफ को डाल, सेनापति ने उसे अपने घर में रखा था। उसने जो कुछ किया वह फलने फूलने लगा। उन्होंने उसे जेल में डाला और सारा जेल फलने फूलने लगा। उन्होंने जो कुछ भी किया वह फलने फूलने लगा। और जब वह फिरौन के पास ऊंचा उठाया गया, सबसे ऊपर, फिरौन के पास हर एक चीज मिस्र में, संसार में, हर किसी से ऊपर बढ़ने लगा। जब वो लौटता है तो यह फलने फूलने वाला देश होगा, पुराने रेगिस्तान खिल उठेंगे और हर स्थान पर अन्न होगा और हम हर एक जन हमारे खुद अपने ही अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और हंस सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं और हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं जब वो राजा की नाई वापस आएगा। वो मनुष्य का पुत्र था, नबी, आमीन। वो मनुष्य का पुत्र था, बलिदान, याजक। वह मनुष्य का पुत्र है, राजा की नाई, दाऊद का पुत्र, जो वैभव के सिंहासन पर बैठा हुआ है। मनुष्य का पुत्र, वह परमेश्वर मनुष्य का पुत्र की नाई में प्रकट हुआ। वह नीचे उतर कर आता है और मनुष्य बनता है ताकि पापों को संसार से दूर लेकर जाए। वो मनुष्य बनता है एक नबी की नाई, वो मनुष्य बनता है एक याजक की नाई, वो मनुष्य बनता है राजा की नाई, स्वर्ग का राजा, संतों का राजा, अनंत राजा, हमेशा ही राजा था, हमेशा राजा रहेगा, वो अनंत राजा है। अब ध्यान देना, फिर यूसुफ, यूसुफ के आगे जाने से पहले वे पहले तुरही को बजाते थे और लोग चिल्ला उठते, यूसुफ के लिए घुटने टिकाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मनुष्य क्या कर रहा था, वो रास्ते पर कुछ सामान को बेच रहा होता था। जब वो तुरही की आवाज होती वो अपने घुटने को झुका देता। एक मनुष्य बस लगभग पहुंचने पर होता और अपने पैसे को लेने पर होता, लेकिन वो अपना घुटना झुका देता। यूसुफ आ रहा था, ओह, एक नाटककार लगभग अपने नाटक को करने के लिए तैयार होता, और तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे रुकना पड़ता था। यूसुफ आ रहा है, तुरही बज उठती। इन दिनों में से एक हर एक चीज, यहाँ तक कि समय भी रुक जाएगा जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे और सुबह वो अनंतता में खुलेगी, उज्जवल और साफ। हर एक चीज घुटने टेक देगी, हर एक घुटना झुकेगा और हर जीभ इसे अंगीकार करेगी। अब आरंभ करें, कुछ मनुष्यों के पाप पहले जाते हैं, कुछ के बाद में, लेकिन अब ध्यान दें कि किस बात ने जगह ली, कितना महिमामय है। जब यूसुफ उसके अन्य जाति में विवाह करने के बाद उसका एक परिवार हुआ, अप्रेम और मनंचे जो उसके पुत्र हुए थे। क्या आपने अंत में ध्यान दिया, जब यूसुफ याकूब ने अप्रेम और मनंचे को आशीष देने लगा, जब उसने वो अपने हाथ को रखने लगा तो उसने अप्रेम को दाईं ओर, मनंचे को बाईं ओर रखा ताकि दाहिने हाथ से बड़े को आशीष दे सके। लेकिन जब उसने प्रार्थना करना आरंभ किया तो उसके हाथ घूम गए और उसने छोटे को दाहिने हाथ से आशीष दी बजाय उस एक को जो उसके दाहिने हाथ पर था। और यूसुफ ने कहा, ऐसा नहीं है पिता, कहा आपने अप्रेम के बजाय मनंचे को आशीष दे दी है। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे हाथ को घुमा दिया। क्या यहूदियों में से जो बड़ा था, जो परमेश्वर का पहला चुना हुआ था, क्रूस के जरिए से अन्य जातियों पर आशीष वापस आती है। आशीष क्रूस के जरिए से आती है, यहूदी से अन्य जातियों के लिए। अस्वीकार कर दिया, उन्होंने क्रूस को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसके पास अन्य जाति की दुल्हन है। अब जब यूसुफ, इससे पहले जब उसने अपने भाइयों के बारे में सुना था, जो वे कई वर्षों से वे संगति से बाहर थे, जो यहूदी हैं, अब देखो हम जकर्याह के पास वापस जा रहे हैं, जहां वे शोक करते, विलाप कर रहे हैं और शोक मनाते हैं, और यहां तक कि वे परिवार खुद को दूसरे परिवारों से अलग करेंगे। बाहर जाकर कहते हैं, हमने इसे कैसे किया, हम भला इसे कभी कैसे कर सकते थे। जब वे कहते तो तुम्हें वे घाव के निशान कहाँ से मिले? वे घावों के निशान जो हाथों में हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसे छेदा वह बादलों में आएगा और वे उसे देखेंगे, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने उसे छेदा था, और हर एक घराना शोक करेगा और वे विलाप करेंगे, वे नहीं जानते कि क्या करें। और जब यूसुफ, आप कहानी को जानते हैं, जब उसने अपने भाइयों को देखा और उसने ऐसा दिखाया कि वह इब्रानी भाषा को नहीं बोल सकता और उसका अनुवादक करने के लिए अनुवादक को लिया और उसने ऐसा अभिनय किया कि वह इब्रानी नहीं बोल सकता, लेकिन वह जानना चाहता था। और इसलिए जब अतः एक दिन जब उन्होंने अपने छोटे भाई को लाया, तो क्या आपने ध्यान दिया? यह बियामिन था जिसने यूसुफ के प्राण को उत्तेजित कर दिया। यह क्या है? यही उसके प्राण को प्रज्वलित कर देगा, हमारे यूसुफ को जो यीशु है। वो छोटी कलीसिया जो वहाँ नीचे ईरान में रही है, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे रखा, और ये एक नया जन्म पाए हुए लोग हैं जो फिलिस्तीन में इकट्ठा हुए थे और फिर से लौटाए गए हैं, जो छह कोनों वाला दाऊद का तारा है, जो संसार का सबसे पुराना झंडा है, एक राष्ट्र जो पिछले कुछ ही वर्षों में जन्मा है, वहाँ इसराइल है। राष्ट्र टूट रहे हैं, इसराइल जागृत हो रहा है। वो चिन्ह जो बाइबल ने पहले ही बताए, अन्य जातियों के दिन गिने चुने हैं, सतावट और उलझन से लौट आओ जो तितर बितर हुए अपनों के लिए। छुटकारे का दिन नजदीक है, डर के मारे मनुष्य को हृदय के दौरे पड़ रहे हैं, बस इसे देखें, वे सारे नसों के रोगी हो गए हैं। आत्मा से भर जाएं, अपने दिए की बाती को ठीक करें और साफ करें, ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। झूठे भविष्यवक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य को वे इनकार कर रहे हैं कि यीशु वो मसीह हमारा परमेश्वर है। महिमा, लेकिन प्रकाशन आ चुका है, इसलिए हम चलेंगे जहाँ प्रेरितों ने कदम को रखा, ठीक उनके उसी स्थान पर, क्योंकि छुटकारे का दिन नजदीक है। डर के मारे मनुष्यों को हृदय के दौरे पड़ रहे हैं। आत्मा से भर जाए, अपने दिए की बाती को ठीक करें और साफ करें, ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। ओह ओह, यूसुफ जब उसने उस छोटे बियामिन को वहां पर खड़े हुए देखा, वही उसका छोटा भाई है। अब आप छोटे बियामिन को देखते हैं, वहां उस ओर वहां पर बैठा हुआ है। धरती की जातियां यहूदियों की वहां वापस लौट आई है, जहां उनमें से 144,000 वहां खड़े हो जाएंगे ताकि मसीह को स्वीकार करें। जब वे उसे आते हुए देखते हैं, वे कहेंगे कि देखो, यह हमारा परमेश्वर है जिसके लिए हम इंतजार में हैं। फिर से छिदा हुआ देखेंगे, ये कहां से आए? उसने कहा, मेरे मित्र के घराने में से। और वे विलाप करेंगे और वे रोएंगे, और हरेक परिवार दाऊद और नेफ्तालीम और वे सारे उनकी जातियां, वे अपने आप को अलग कर देंगे, हरेक परिवार। और जब वे उसे हवा में खड़ा हुआ देखते हैं, तो वे रोने लगेंगे, वो एक जिसे उन्होंने छेदा था। उसका संदेश क्या होगा? देखो यूसुफ ने क्या कहा, जब उसने कहा, एक और बात देखना, जब यूसुफ उसके सामने संतानों को लाया गया, तो उसने उनकी तरफ देखा, उसने बियामिन को देखा, उसने अप्रेम को देखा, उसने वहाँ के बाकी को देखा, गाद और उन सभी को देखा, और वे 12 गोत्र, तब वे 10 जातियाँ उसके सामने खड़ी थी। उसने उन सभी को वहाँ खड़ा हुआ देखा, वो जानता था कि वे उसके भाई थे, और उसने सीधा छोटे बियामिन की ओर देखा, उसका गला भर आया, वो जानता था कि वे उसके थे। उसने क्या कहा? हर एक जन मुझे छोड़कर चला जाए। उसकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ? वे महल में चले गए। अन्य जाति कलीसिया रैप्चर पर कहां जाएगी? महल के अंदर। वो दुल्हन, हालेलुया, वो दुल्हन पिरसी पर से रैप्चर में उठा ली जाएगी। फिर जब वह वापस आता है, तो उसकी दुल्हन वहां नहीं होती है। जब वह अपने भाइयों को, खुद को प्रकट करता है, यहूदियों को जिन लोगों ने उसे छेदा था, जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके प्रियजन, उसके करीबी मित्र, उसके अपने परमेश्वर के भेजे हुए सहभागी मंदिर में थे। और जब उसने देखा, उसने कहा कि वे उन्होंने नहीं जाना। उन्होंने कहा, ओह ये महान राजकुमार, ये एक दूसरे से कहना आरंभ करते हैं, ओह उन चीजों के बारे में जिन चीजों को उन्होंने किया था। मैं सोचता हूँ कि ये अप्रेम था या अप्रेम नहीं था, लेकिन मैं भूल गया कि यह अब कौन था जिसने कहा, तो हमें अपने भाई यूसुफ को नहीं मारना चाहिए था। कहा, तुम देख रहे हो कि हमें वापस भुगतान करना पड़ रहा है। रुबेन ने कहा, हमें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए था। उसने कहा, क्योंकि तुम देख रहे हो हमने जो किया है, उसके लिए हमें वापस भुगतान करना पड़ रहा है। और यूसुफ वहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा नहीं था कि वह इब्रानी को समझ सकता है, लेकिन वो इसे जानता था। कुछ सोचते हैं, बोल नहीं सकता, अन्य भाषा को समझ नहीं सकता है, लेकिन वह इसके विषय में सब जानता है। जी हाँ, वह जानता है। सोने के सिर में पहला सिर है अन्य जाति का राज्य, अन्य भाषा बोलने और अनुवाद के साथ आता है। पहले उस अन्य जाति के समय काल का अंत क्या हुआ? दीवार पर अन्य भाषा का हस्तलेख, और वहाँ एक मनुष्य इसका अनुवाद कर सकता था और बता सकता था कि यह क्या था। यह उसी तरह से होता आया है। आमीन प्रवेश करता है और उसी तरह होता हुआ निकल गया। उन्होंने सोचा कि वो अन्य भाषाओं को नहीं बोल सकता है जिसे वे बोल रहे थे, लेकिन वो इसे जानता था। उन्होंने कहा, तुमने देखा कि हमें क्या मिला? और तब यूसुफ ने देखा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वे दुखित हैं। अब उसने उनके दुख को देखा और उसे अस्वीकार करने के लिए पछतावा है। सो उसके लिए अब उसका गला घुटने लगा था। वह अपने कलीसिया को धरती पर से बाहर निकालने के लिए तैयार है, उसे महिमा में ले जाने के लिए। बाद में वापस आता है और तब धरती की सारी जातियां विलाप करेंगी। उन्होंने क्या किया? रूबेन, उन सभी ने रोना आरंभ किया। उन्होंने कहा, ओह ओह, वे डर गए और कहा, यह तो वो ही है। अब हम जानते हैं कि हम इसीलिए अंदर हैं। अब वो हमें मार डालेगा। अब वह हम जानते हैं कि हम ठीक अभी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह यूसुफ है जो हमसे इतने लंबे समय से दूर रहा है। यूसुफ हमारा भाई, हम अब वास्तव में इसी बात के लिए अंदर हैं। उसने कहा, अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ। परमेश्वर ने जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया है। परमेश्वर ने क्या किया? यहूदियों ने यीशु को क्यों अस्वीकार किया? इसलिए कि हम अन्य जाति, क्योंकि वे लोग जिसे उसने अपने नाम के कारण बाहर बुलाया। परमेश्वर ने ऐसा किया ताकि अन्य जातियों की कलीसिया दुल्हन का जीवन बच जाए। वे सारी जातियाँ जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, वे विलाप करेंगे। वे खुद को घने और चट्टानों में और इत्यादि में छिपा लेंगे, कहते हुए, छिपा लो, पहाड़ों हम पर गिरो। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उसे सारी पृथ्वी के कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, और वहाँ इसराइल में हरेक परिवार अपने आप को अलग करेगा। परिवार एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और कहेंगे, हमने ऐसा क्यों किया? हमने भला कैसे उसे अस्वीकार कर दिया? कैसे वह वहाँ पर खड़ा होता है? वहाँ वो परमेश्वर है जिसके लिए हमने इंतजार किया है, और वहाँ पर वो है। उसके हाथों में कीलों के निशान है, और इसे हमने किया है। बिल्कुल यही है जो ठीक उन्होंने वहाँ पर कहा था, जब उन्होंने वापस आकर कहा, वहाँ वह यूसुफ है जिसे हमने बेच दिया था। उसने कहा, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। ओह, वे डर गए थे और वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे और एक दूसरे के पास जाकर कह रहे थे, हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब किया। परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा। परमेश्वर ने सारे मनुष्य को बनाया, गोरे मनुष्य, काले मनुष्य, बुरे मनुष्य, पीले मनुष्य, हर एक मनुष्य को। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य की सृष्टि की। उसने अन्य जातियों की सृष्टि की, यहूदियों की सृष्टि की। उसने सबको बनाया। ये सब उसकी महिमा के लिए है, और यहूदियों को अस्वीकार करना था जिससे कि अन्य जाति से दुल्हन को ले। यही वो कारण है कि ये सारे उदाहरण हैं। सो अन्य जाति दुल्हन और उसके साथ जो उसका वंश है, वो महिमा में पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो मेमने के लहू से धोई गई है, पुनरुत्थान की सारी सामर्थ के साथ जो उनमें रहती है, किसी दिन रैप्चर में उठ खड़े होंगे, एक क्षण में पलक झपकते ही, ताकि यीशु की उपस्थिति में हो ले जब वह वापस लौटता है और सबको वहाँ से निकाल देता है, जिससे कि वो अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करे। देखो कि वचन यहाँ पर क्या कहता है, समाप्त करते हुए, ओह देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हरेक आंख उसे देखेगी। अब वह दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है, न कि रैप्चर के लिए, वरन जिन्होंने उसे भेजा था। सातवां अध्याय पहला पद, या पहला अध्याय का सातवां पद, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तब वह बड़े हवाले को देता है, ये कौन है? ये कौन है जिसे वे देखने के लिए जाने वाले हैं? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ए और जेड हूँ, यूनानी ए और जेड, यूनानी अक्षरमाला। प्रेरितों के काम 2:36, पतरस ने कहा, आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य को बचाया जाना चाहिए। या नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इसे गलत बता रहा हूँ। उसने कहा, सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यूहन्ना 14:7-12, थोमा ने कहा, परमेश्वर हमें पिता दिखाओ और यह हमें संतुष्ट करेगा। कहा, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे नहीं जानते। कहा, वो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू मुझसे क्यों कहता है मुझे पिता को दिखाओ, मैं और मेरा पिता एक हैं। मैंने एक समय एक व्यक्ति से कहा, महिला ने कहा, बस एक मिनट श्रीमान ब्रैनम। कहा, आप और आपकी पत्नी भी एक हैं। मैंने कहा, लेकिन उस तरह से नहीं। उसने कहा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या आप मुझे देखती हैं? उसने कहा, मैं देखती हूँ। मैंने कहा, क्या आप मेरी पत्नी को देखती हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तब वे एक अलग प्रकार से हैं। यीशु ने कहा, जब आप मुझे देखते हो तो आप पिता को देखते हो। तो इसके लिए इतना ही काफी था। सो संत यूहन्ना या पहला यूहन्ना 5:7-8 में आप सभी जो इसे लिख रहे हैं, पहला यूहन्ना 5:7-8 बाइबल ने कहा, वो बोलने वाला व्यक्ता वही मनुष्य जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा था जिसे यीशु ने उसे दिया। उसने कहा, वहाँ तीन हैं जो स्वर्ग में गवाही को देते हैं, पिता, वचन, वचन वो पुत्र है, पिता वो वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही हैं। वहाँ धरती में तीन हैं जो गवाही को देते हैं, पानी, लहू और आत्मा, और वे सहमत होते हैं, एक नहीं है लेकिन वे एक में सहमत होते हैं। आपके पास बिना पुत्र हुए पिता नहीं हो सकता, आपके पास पिता और पुत्र नहीं हो सकता पवित्र आत्मा हुए बिना, सही है। लेकिन आप और पानी, लहू और आत्मा, यही वो तत्व है जो उसकी देह में ले जाते हैं। जब एक स्वाभाविक जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जब एक स्त्री बालक को जन्म देती है, पहली चीज ये पानी है, दूसरी चीज लहू है, क्या सही है? अगली चीज आत्मा है। वो बालक अपनी सांस को पकड़ता है, सांस लेना आरंभ करता है। पानी, लहू और आत्मा वो स्वाभाविक जन्म को संगठित करते हैं, आत्मिक जन्म भी। पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा धर्मीकरण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पानी। अगला क्या है? लहू, पवित्रीकरण, साफ करते हुए, उसे बाहर करते हुए। वही जहां आप नाजरीन लोग चूक गए, आप बस उतना ही दूर गए और आगे नहीं बढ़े। वो पात्र जो वेदी पर पवित्र किया गया सेवा के लिए तैयार है लेकिन सेवा में नहीं होता है। धन्य है वे, धन्य उपदेश जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भर दिए जाएंगे। वो पात्र पवित्र हुआ है, यह सही बात है। वह कुवारी की तरह है, वो शब्द कुवारी का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, बिना मिलावट का पवित्र हुआ। 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था, 5 भरे हुए थे और वे दूसरे केवल पवित्रीकरण में ही रहे। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तुम जो बैप्टिस्ट हो, प्रेस्बिटेरियन हो, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। फिर तुमने कैसे बपतिस्मा लिया? उसके उन पर हाथ रखने के बाद, तब वे बचाए जाने के बाद और पवित्र हुए थे, उसके बाद वे पवित्र आत्मा से भर गए थे, सही है। पानी, लहू, आत्मा यीशु धोने और शुद्ध करने के लिए आया, और ताकि एक कलीसिया को पवित्र करे जिससे वो आकर उसमें रह सके उसके अपने खुद के लहू से। उसने अपने ही परमेश्वर से जन्मे लहू को दिया जिससे वह हमें हमारे शारीरिक संबंध के जन्म से साफ कर सके और हमें एक पवित्रीकरण को दे, पवित्र पात्र जिससे कि वो खुद आ सके। थोड़ी देर रह गई है और ये संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में संसार के अंत तक रहूंगा, आमीन। वहाँ से होते हुए मैं तुम्हारे साथ और तुम में रहूंगा, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर कलीसिया में है। ओह प्रभु, दैविकता, स्वर्ग में तीन हैं जो गवाही को देते हैं, पिता, वचन, पुत्र, पवित्र आत्मा, वे एक हैं। अब आप बचाए जा सकते हैं बिना पवित्रीकरण हुए, आपका पवित्रीकरण हो सकता है और पवित्र आत्मा नहीं होता है, यह सही है। पवित्र किया हुआ आत्मा बिना भरा हुआ आपके हृदय को पवित्र करते हुए, आपके हृदय को साफ करते हुए, बिना किसी चीज के साथ भरे हुए, यह वही है जो उसने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से बाहर चली जाती है वो सूखे स्थानों पर चलता है, अशुद्ध आत्मा वापस आता है, अपने घर को पूरी तरह से सजा हुआ पाता है और अंदर आ जाता है। उस व्यक्ति की अवस्था कई गुना, 7 गुना पहले से भी बदतर हो जाती है। यही है जो आप पिलग्रिम होलीनेस वालों का हुआ है, नाजरीन और इत्यादि, आपने स्वीकार किया है, और जब पवित्र आत्मा आता है अन्य भाषा में बोलना आरंभ करते हैं और चिन्ह और चमत्कार को करते हैं, तो आप इसे शैतान कहते हैं और परमेश्वर के कामों को दोषी ठहराते हैं, इसे एक अशुद्ध चीज कहते हैं। और क्या आप देखते हैं कि आपकी कलीसिया कहाँ निकल चुकी है? उसमें से बाहर निकलो, वो घड़ी यहाँ पर है। यीशु मसीह का प्रकाशन को सिखाया जा रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के उसके प्रमाण की सामर्थ्य में प्रकट हुआ है। आमीन। छुटकारे का दिन निकट है, अब दैविकता उसी में। पहला तीमुथियुस 3:16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद महान है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ओह, बस आगे और आगे और आगे। लेकिन अब हम कहाँ पर हैं? 8वें पद पर। आज रात को हम 9वें पद से आरंभ करेंगे, पचमुझ का दर्शन। ओह, हमारे लिए महान चीजों को संग्रह करके रखा है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीद लिया। कलवरी के पेड़ पर। क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है जो यीशु मसीह है? परमेश्वर देह में प्रकट हुआ ताकि पाप को दूर करे। वह अपने आप को कलीसियाओं में इन अंतिम दिनों में प्रकट कर रहा है जिससे वह खुद को ज्ञात करवाए। अब ये वही चीजें हैं जो कलीसिया में चल रही हैं। ध्यान दें और देखें इस संदेश के अंत में कि क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि ये चीजें होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से देखो, क्या वे वास्तव में एफिसियन युग में नहीं थे? और पिरगमुन, थुआतीरा और आगे इस युग में बताया कि लूथर कैसे करेगा और वेस्ली कैसे करेगा और कैसे यह पेंटिकॉस्टल संप्रदाय एक लौदिकिया में चला जाएगा गुनगुनी स्थिति में, लेकिन इसके बीच में वह लोगों को खींच लेगा। यह सही बात है, यह बिल्कुल ऐसा ही है। हम अंत में हैं। ओह, मैं बहुत ही खुश हूँ। और ओह, जैसा कि मैंने अपने आप को देखा है टूटते हुए और अपने दोस्तों और चीजों को और संसार और इस गड़बड़ी को जिसमें वे हैं, और फिर सोचता हूँ कि प्रभु का आगमन इतना निकट आ रहा है। हम युग के अंत में हैं। डर के कारण मनुष्य को हृदय का दौरा पड़ रहा है। हर कहीं, हर कोई, यह हर समय रेडियो पर चेतावनी दी जा रही है, हवाई हमले के लिए तैयार रहें। इसे अंदर में ले ले, उसे अंदर ले और नीचे तहखाने में चले जाएं। आप भला इससे कैसे छुपेंगे? उससे छिपा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, वह चीज 150 फुट जमीन के अंदर चली जाएगी, 150 स्क्वायर फुट, क्योंकि इसकी हिलावट, यदि ये वहाँ पर प्रहार किया जाता है तो यह जमीन पर इंडियाना पॉलिस तक को हिला देगी, क्योंकि यह इंडियाना पॉलिस को उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो ठीक यहाँ लुइसियाना में पहुँचेगा। देखो, उसमें से एक, यह बताना मुश्किल है। इसके अलावा उनके पास और क्या क्या है? और देखो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जानते हैं, रूस को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यूबा ऐसा कर सकता है। कोई भी छोटे से स्थान पर, एक छोटा सा स्थान उस ओर अल्काट्राज के आकार का, इसे कर सकता है, जो सारे संसार तक फैल सकता है। केवल एक चीज जो आपको करनी है वह है बस उसे ऊपर लाकर और एक तार को खींचना है। आपको सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसे करने के लिए एक कट्टरपंथी की आवश्यकता है जो शैतान के हाथों में है। यह बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा करेगा और उसके बाद सारी चीज खत्म हो जाती है। यह सब खत्म हो जाता है। लेकिन ओह, मैं आपको इस धन्य चीज को देता हूँ। जब हम इसे इतने नजदीक से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि यह सुबह होने से पहले हो सकता है, याद रखें, यह घटित होने से पहले कलीसिया घर चली जाती है, इससे पहले रैप्चर जगह को ले लेता है। अब जिससे तुम मुड़ नहीं सकते, याद रखना, यीशु ने कहा जैसा कि नूह के दिनों में था, जैसा कि लूत के दिनों में था। याद रखो, इससे पहले कोई बारिश गिरे, नूह जहाज में था। देखा, नूह जहाज में था, उसे इसके जरिए से बच निकाला। और अब नूह एक यहूदी का नमूना था, लेकिन हनोक मरे बिना ही घर चला गया। और जब नूह ने हनोक को जाते हुए देखा, वह जान गया यही वो समय है कि जहाज को आरंभ करना है। ये सही बात है, यह नूह का चिन्ह था जब हनोक घर चला गया। और जैसे ही अन्य जाति कलीसिया उठा ली जाती है, तब वह खुद को इज़राइल को प्रकट करता है। समझे, ये सही है। याद रखें, लूत के दिनों में जैसा कि यीशु ने कहा, इससे पहले कि आग की एक चिंगारी कभी धरती पर टकराए। उस दूत ने कहा, दौड़ो, जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो, क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम अतः आ नहीं जाते। इससे पहले आग लगे लूत और उसका परिवार बाहर था और खत्म हो गया, इसलिए महासंकट होने से पहले रैप्चर हो जाएगा। महासंकट, बहुत से लोगों ने उन्हें मिश्रित कर दिया है। हम इस सप्ताह इसे सीधे सीधे ले लेंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो, प्रभु की सहायता से। याद रखना, आप एक बड़े महासंकट के काल के लिए देख रहे हैं जो था। यदि आप बाइबल में नमूने को देखें, जो कि याकूब के परेशानी के दिन थे, आप देखें जब वो परेशानी में था, अन्य जातियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। अन्य जातियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, बाइबल में कोई नमूना नहीं है अन्य जाति कलीसिया का रैप्चर हो जाता है। और आप पानी का लहू में बदलना इसके लिए देख रहे हैं और इस तरह की चीजों के लिए जो वहाँ पर इसराइल के लिए वापस आता है, मूसा और एलिया के साथ जब वे वापस आते हैं, एलिया चौथी बार आत्मा में वापस लौटता है। न तो उनमें से कोई मरा था या मूसा मरा, वे नहीं जानते थे कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया है। वह उस समय और उसके बीच कहीं तो जी उठने के लिए बाध्य था, क्योंकि रूपांतर के पहाड़ पर वो वहाँ पर था, यीशु से बातें कर रहा था। क्या वो नहीं कर रहा था? देखा, सो वे वापस आकर और मारे जाएंगे, और जिसे आत्मिक मार्ग कहा जाता है, सदोम, वहाँ डाल दिए जाएंगे जहाँ हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलेम में। वे यहूदियों के लिए प्रचार करेंगे और धरती पर प्रहार करेंगे और आकाश बंद करेंगे और इसी तरह से इत्यादि, और अन्य जातियों की सेवकाई आगे स्थानांतरित होकर और इसके साथ जुड़ जाएगी, और अन्य जाति घर चले जाएंगे और वह सेवकाई आगे बढ़ेगी। वहाँ सारी चीजों का नाश होगा, धरती का दो तिहाई भाग गिर जाता है और बाकी का सब कुछ। जब 3 दिन तक सड़क पर वे मरे हुए शरीर पड़े रहते हैं, तो देखो यह किस तरह से था। इन तस्वीरों को देखो, मुझे वहाँ दक्षिण अमेरिका से मिली है, जब उन्होंने उस पेंटिकॉस्टल मिशनरी को मार डाला, उसकी पत्नी और वो और दो छोटे बच्चे वहाँ सड़क पर पड़े हुए थे। वो छोटी लड़की और उसका छोटा सा पेट इस तरह से फूल गया था। उन्होंने उन्हें दफनाया भी नहीं, वहाँ से निकल गए इस तरह से उन पर थूकते हुए। वे 3-4 दिन तक पड़े थे। भाई कोप ने तस्वीरें खींची, वे मेरे घर पर हैं, देखो जिस तरह से वे कर रहे हैं। फिर वे एक दूसरे के लिए उपहारों को भेजते हैं। देखो कि बाइबल में ये कैसा नमूना है। आप देखें कि कलीसिया यह क्या करने जा रही है। यह सही है, ठीक सामने है, और ठीक अभी एक सांप की तरह चल रही है। जितनी वो चालाक हो सकती है, वो है ठीक अभी उन बातों के चिन्ह है। इस भविष्यवाणी को देखें जिसे प्रभु ने मुझे 33 में दिया, ये कैसे होगा। वे महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देते हैं, मतदान में वे गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं। 7 चीजें मुझे दी गई थी और उसमें से 5 पहले ही हो चुकी हैं। अगली चीज, वो एक बड़ी महिला, एक कलीसिया, एक सामर्थ या कुछ और इस संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिकार में ले लेती है राज्य करने के लिए। तब मैंने इसे राख की तरह देखा, पड़ा हुआ देखा है, जहाँ ये अंत में आता है। यह अंत का समय था। इसने कहा, उनके पास एक मशीन है जो चलाई जा सकती है, उनके पास इसे चलाने के लिए कोई नहीं है, उन्होंने इसे अभी तैयार कर लिया है। इसने कहा, 11 वर्ष, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये वहाँ पन्नों पर लिखा है, आप नहीं कर सकते, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वहाँ पन्नों पर है, जैसा कि पवित्र आत्मा ने कहा, 11 वर्ष पहले मैजिनॉट लाइन का निर्माण होने से पहले मैंने कहा था, वे जर्मन अमेरिका तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट उन सभी का दुष्ट होगा, और यह सही है, वो था। आप लोकतंत्रवादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह अब लोकतंत्रवाद या प्रजातंत्र नहीं है, यह यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ना तो लोकतंत्रवाद या ना ही प्रजातंत्र हूं, मैं एक मसीह हूं। तो फिर वे जो कुछ भी थे, लेकिन आप वहां ध्यान दें और यहां देखो। एक दिन यदि आप देखना चाहते हैं कि एक विश्वासघाती झुंड क्या है, उन मशीनों को लेते हैं और उन्हें ऐसा बनाते हैं जहां हर बार जब आप श्रीमान निक्सन के लिए वोट डालेंगे, तो आपको उसी समय पर ये दूसरे व्यक्ति को वोट चला जाता है। ये एडगर हूवर ने मशीनों को बाहर निकाला, कितने लोग इसे समझ रहे हैं, क्योंकि अवश्य ही ये सारे अखबारों में, समाचार और बाकी सभी पर आया है। आपने देखा कि हम कहां पर हैं, वहां मसीह के अलावा कुछ और ईमानदारी नहीं है। आमीन। ओह, धन्य है वो पुरानी किताब, ऐसा ही है। यह केवल एक किताब है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आप कहां जा रहे हैं। जी हां श्रीमान, यह वह धन्य पुरानी किताब है, ओह, जो मुझे उससे प्रेम करने को लगाती है। क्या यह आपको नहीं लगाती? पिता में विश्वास, पुत्र पर विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, ये तीनों एक हैं। दुष्ट आत्माएं कांपने लगेंगी और पापी जाग उठेंगे। यहोवा में विश्वास किसी को भी हिला देता है। आमीन। क्या ही महान दिन हमारे सामने हैं मित्रों। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने अपने दूत को दिया और आकर इसे यूहन्ना को वर्णन करता है, जिससे कि यह कलीसिया के युगों में से होते हुए जाना जा सके, वे बातें जो हमारे लिए बचा कर रखी हैं, होने पाए। परमेश्वर अब हमें आशीष दे, जैसा हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमेशा जो पियानो को बजाता है, हमें जरा स्वर को दें। यदि आप चाहें तो यीशु के नाम को अपने साथ लें। अब सुनना, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की सुबह यहाँ हमारे बीच मेहमान लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके हाथों को मिलाएं, उन्हें आमंत्रित करें, उनके साथ घर जाएं और जो भी है, और हर एक का स्वागत करें। मैं चाहता हूँ कि हर कोई निसंदेह ऐसा करे। और याद रखें कि सभा आज रात 7 बजे आरंभ होगी और 7:30 को मैं पतमुस के दर्शन पर बोलूंगा। कल रात प्रभु ने चाहा तो मैं पहले कलीसिया के युग इफिसुस पर बोलूंगा। अब हम गीत गाने जा रहे हैं, यीशु के नाम को अपने साथ लें, हमारे भवन का छोटा सा समाप्त करने का गीत है। और अब हर एक जन गाए तो ठीक है। यीशु के नाम को अपने साथ लें, दुख और शोक की संतान, यह आपको आनंद और सुकून देगा। हर कहीं तुम जाते हो इसे ले जाएं। बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। अब इससे पहले कि हम अगले पद को गाएं, मैं चाहता हूं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक, नाजरीन, पिलग्रिम, होलीनेस, वे सभी बस यहाँ वहाँ जाकर किसी के साथ हाथ को मिलाएं जो आपके सामने हैं, आपके पास, आपके पीछे, कहें मसीह यात्री, मित्र, मैं आज सुबह आपको यहाँ पाकर खुश हूँ। परमेश्वर की उन बातों के इर्द गिर्द आपके साथ संगति करके खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा समय था। आज रात आपको फिर से यहाँ देखने की आशा है। ऐसा ही कुछ जब आप लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, आपके सामने, आपके पीछे, आपके आसपास। यीशु नाम पर झुकते हुए आज रात को मिलते हैं भाई नेविल, आज रात को मिलेंगे। पैरों पर स्वर्ग में राजाओं का राजा, हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। ओ बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं यीशु के चरणों में, जब तक हम मिलते नहीं, 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 परमेश्वर आपके साथ रहे। जब अब हम अपने सिर को झुकाते हैं, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं,